ओम शांति। सभागार में पधारे हुए सभी भाई बहनों का हृदय से स्वागत है। आज के मुख्य अतिथियों को, वक्ताओं को मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूं। आप पधारें, इस रूहानी मंच पर, इस दिव्य मंच पर अपना दिव्य आसन लें। बीके ललित भाई जी, स्वामी शांतानंदा जी, मिस्टर मार्कंडे अधिकारी जी, बहन पूर्वा मिश्रा जी, कैलाश अधिकारी जी, डॉक्टर वी के सारस्वत जी, कविंद्र गुप्ता जी, शैलेश कुमार जी, अर्चिका दीदी, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सरला दीदी जी, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी चंद्रिका दीदी जी, जस्टिस वी ऐश्वर्या जी, अनिल देवगन जी, परमहंस स्वामी सत्य प्रजनंदा सरस्वती जी, राजयोगी ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय भाई जी और ब्रह्मा कुमार कोमल भाई जी, आप सभी से निवेदन है, पधारें। स्वासन पर स्थित ये महान आत्माएं अपना आसन लें, इस मंच को शोभायमान करें। कोमल भाई आप भी पधारें। आदरणीय ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय भाई जी से भी निवेदन है कि आप भी पधारें। भाई और बहनों, अनेकों उमंगों को लेकर ये सुबह सुहानी आई है शांतिवन के इस प्रांगण में, इस सभागार में। देखिए, बहारें छाई हैं और 80 वर्ष पूरे होने पर आप सभी को कोटि कोटि बधाई है, कोटि कोटि बधाई है। तो आइए कार्यक्रम का शुभारंभ परमपिता परमात्मा को साथ लेते हुए इस विश्व में सबके लिए सुख शांति की शुभना कामनाएं करते हुए परमात्मा पिता की याद से कुछ पल में बैठकर हम शुरुआत करते हैं। तीसरा दिन है इस महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने अपनी 80 वर्ष की यात्रा पूरी की है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की 80 वर्षों की यात्रा सारे विश्व को एक आध्यात्मिक सूत्र में पिरोने की है। यह यात्रा हर हृदय में ज्ञान और योग के बीज बोने की है। यह यात्रा मानवता को सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने की है। यह यात्रा मानव को देव बनाने की है। इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में आकर आत्मा को अपना सच्चा स्वधर्म मिलता है, ज्ञान और योग से हर दर्द का मरहम मिलता है। यहाँ साधना से सेवा से जीवन को ऊंची उड़ान दी जाती है, यहाँ खुद की सच्ची पहचान दी जाती है। ये 80 वर्षों की यात्रा है प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के दुलारों की, पुत्रियों की, जो आशाओं को भर के दिल में चलते हैं, जो सच्चे दीपक हैं, जो रोशनी के लिए साथ जलते हैं। ये यात्रा है ऊंचे दृष्टिकोण की, ये यात्रा है ऊंचे हिमालय की, ये यात्रा है सदा शिव के सच्चे शिवालय की, ये यात्रा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की, ईश्वरीय विश्वविद्यालय की। आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करूंगा कि मंच परासीन मेहमानों का स्वागत पुष्प गुच्छों से, बैजेस से किया जाए। पुष्प बहुत ही प्यारे होते हैं, अपनी रंगत और खुशबू से मन के भावों को कह देते हैं। कोई पुष्प प्रेम के भावों से भरा है, कोई शांति के, कोई अपनेपन, रूहानियत से सुगंधित इन मेहमानों का स्वागत ये सुगंधित पुष्प करते हुए हमारी देवी बहने बैजिज और पुष्पों द्वारा स्वागत कर रही हैं। भाई बहनों कहते हैं जिंदगी सजती है प्रीत से और महफिल सजती है गीत से, तो मैं स्वागत गीत के लिए आमंत्रित कर रहा हूं भ्राता रामू महाराजा पुरम जी को, जो कि बहुत ही जाने माने सिंगर हैं, चेन्नई से हमारे बीच पधारे हैं, बहुत सारी इनकी एल्बम्स हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं, आए हमारे बीच पधारे और अपना स्वागत गीत प्रस्तुत करें।
बदलेंगे तस्वीर विश्व की परम पिता शिव के संतान घर घर में खुशहाली होगी मानव होगा देव समान मानव होगा देव समान बदलेंगे तस्वीर विश्व की परम पिता शिव की संतान घर घर में खुशहाली होगी मानव होगा देव समान मानव होगा देव समान खुद को बदल दिखाए सबसे परिवर्तन लाए मन दर्पण के प्रभु दर्शन हो जीवन धन्य बनाए सद्गुण से श्रृंगार करे सद्गुण से श्रृंगार करे हम करे जगत का नव निर्माण घर घर में खुशहाली होगी मानव होगा देव समान मानव होगा देव समान बदलेंगे तस्वीर विश्व की परम पिता शिव के संतान घर घर में खुशहाली होगी मानव होगा देव समान मानव होगा देव समान शांति पहलाए प्रेम का पाठ पढ़ाए वसुंधरा परिवार हो कैसा स्वर्ग धरा पर लाए पवित्रता के बल से कर दे पवित्रता के बल से कर दे अपना भारत देश महान घर घर में खुशहाली होगी मानव होगा देव समान मानव होगा देव समान बदलेंगे तस्वीर विश्व की परम पिता शिव की संतान घर घर में खुशहाली होगी मानव होगा देव समान मानव होगा देव समान धर्म का मर्म बताए हम प्रभु संदेश सुनाए राजयोग के प्रकाश में सतयुग की राह दिखाए आज से ज्यादा सुंदर होगा आज से ज्यादा सुंदर होगा आने वाले कल का जहां घर घर में खुशहाली होगी मानव होगा देव समान मानव होगा देव समान बदलेंगे तस्वीर विश्व की परम पिता शिव की संतान घर घर में खुशहाली होगी मानव होगा देव समान मानव होगा देव समान मानव होगा देव समान मानव होगा देव समान, मानव होगा देव समान, मानव होगा देव समान, मानव होगा देव समान।
धन्यवाद भ्राता रामू महाराजा। पुरम जी बहुत ही प्यारा गीत, मानव होगा देव समान। नृत्य करती इस बेला में मैं स्वागत नृत्य के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा श्री रजनी राजा कला क्षेत्रम जो कि विजयना ग्राम से पधारे हैं। आप पधारें और हमारे सामने आज का स्वागत नृत्य प्रस्तुत करें। हम करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। वंदे मातरम, बहुत ही सुंदर नृत्य हमारी दिव्य बहनों के द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई बहनों, जब प्रीत उठती है तो भक्ति हो जाती है और नारी इस परिवेश में आकर शक्ति हो जाती है। स्वागत की ये बेला है, मैं स्वागत के अक्षय शब्द पुष्पों द्वारा स्वागत करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं भ्राता बीके ललित जी को, जो कि प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ब्रह्मा कुमारीज के सेक्रेटरी हैं और हमारे यहाँ शांति वन में अपनी सेवाएं समर्पित भाव से दे रहे हैं। भ्राता ललित जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज के इस शुभ अवसर पर, शुभ दिन पर आप सभी के स्वागत करने का मुझे सौभाग्य मिला है। आज चैत्र मास की पहली नवरात्रि है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग नाम से विशेष त्योहारों के रूप में इसे मना रहे हैं। चेटीचंड या गुड़ी पर्व या जिस भी नाम से मना रहे हैं, तो ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की ओर से मैं आप सभी का आज के दिन पर विशेष अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे सर्व आत्माओं के परमपिता परमात्मा, जिन्हें हम सभी याद करते हैं, तो इस विशेष सत्र में सबसे पहले मैं मीठे प्यारे शिव बाबा का स्वागत करके आमंत्रित करता हूं कि आज हमारे मध्य रहकर हम सभी को भरपूर करें। ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने ये यात्रा 80 वर्ष पहले शुरू की थी एक छोटे से ग्रुप के साथ, और ये यात्रा आज 80 वर्ष पूरा करने जा रही है, 81वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। वो एक छोटा सा ग्रुप आज एक बहुत बड़ा वटवृक्ष बन चुका है, एक कारवां बन चुका है, और उस ग्रुप में हमारी कुछ छोटी छोटी बच्चियां भी थी जो आज दादियां हैं, इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की आधार स्तंभ है। उन दादियों का भी मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सभी आमंत्रित विशेष अतिथिगण, सभी का मैं नाम सहित विशेष स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे महामहिम राज्यपाल जी जो गुजरात से पधारने वाले हैं, उनका भी मैं इन एडवांस स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ऐसी महान संस्था, जिनके 80वें वर्ष का ये हम विशेष प्रोग्राम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ये सेलिब्रेशन किसी एक संस्था का नहीं है, लेकिन एक संस्कृति का सेलिब्रेशन है, एक विश्व परिवर्तन के लिए जो आंदोलन, एक क्रांति चली है, उसका यह सेलिब्रेशन हो रहा है। और इस सेलिब्रेशन में ब्रह्मा कुमारीज के हजारों समर्पित भाई बहने, वो सभी इस सेलिब्रेशन के अभिनंदन के हकदार हैं कि जिन्होंने इस महान संस्था को इस मुकाम तक पहुंचाया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले ही जो विशेष उद्बोधन दिया था, उसमें उन्होंने इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की अनेक विशेषताएं बताई थी। तो ये स्वागत केवल व्यक्तियों का नहीं, लेकिन यहाँ जो मूल्य प्रसारित किए जा रहे हैं, यहाँ की शिक्षाओं के द्वारा जो विश्व में जीवन परिवर्तन किए जा रहे हैं, उन सब प्रयासों का स्वागत है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जो भी जुड़े हैं, निसंदेह ये 80 वर्ष की यात्रा में काफी उतार चढ़ाव आते हैं और काफी चैलेंजेज भी आए हैं, लेकिन सभी के मन में एक अटल विश्वास, एक निश्चय, और उसके आधार पर ये अविरत यात्रा जो इस मुकाम तक पहुंची है। मैं दो पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा कि जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हैं उनके मन में एक निश्चय रहा है और उस निश्चय के आधार पर वो आगे बढ़े हैं और आप सभी भी उसी निश्चय के आधार पर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़कर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाएं। तो वो पंक्तियां हैं, सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, जो अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, जो अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता ललित जी इन स्वागत के शब्द पुष्पों के लिए। आपके स्वागत की ये पावन बेला है, आप पधारे हैं सब, हर लम्हा रोशन है, आप पधारे और महका ये गुलशन है। भाई बहनों, आज के मैं सभी मेहमानों से, हमारे अतिथियों से, वक्ताओं से ये एक शुरू में जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि समय का जरूर ध्यान रखें। आज सागर को जो है गागर में भरना है, बहुत लंबा कार्यक्रम है और कहते हैं जो बहुत बड़ी बात बहुत थोड़े में कह जाए वो बहुत बड़ी महानता का प्रतीक होती है। तो सभी कृपया समय का आज जरूर ध्यान रखें ताकि सभी इस पूरे समूचे कार्यक्रम का लाभ ले सकें। मैं इसके बाद हमारे आदरणीय माननीय अगले जो मेहमान हैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा। भ्राता एचएच भीखू संघ सेना जी, फाउंडर महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर लद्दाख, बड़ी दूर से हमारे बीच पधारे हैं तो तालियों से करतल ध्वनि से स्वागत भी वैसा ही होना चाहिए। पधारिए, अपनी प्रज्ञा हमारे बीच बांटे, स्वागत है आपका।
बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। My most respectful pranam to Pujya, Param Pujya Prajapita Brahma, the founder of the Brahma Kumari organizations. My most respectful pranam to all the revered Dadi Mataji of the Brahma Kumaris and all the distinguished guests on the dais, and my dear sisters and brothers of Brahma Kumari and all the other distinguished guests present in this august gathering, in this most significant, most beautiful spiritual land, the headquarter of Brahma Kumari. I offer my loving greetings to all of you on these occasions, and I bring warmest greetings to all of you from the coldest land of Ladakh in the high Himalayas. It is my privilege, honors, and pleasure to be part of this 88th anniversary of the Prajapita Brahma Kumaris Ishwariya Vishwa Vidyalaya and the International Conference Come Cultural Festival on God's Wisdom for World Transformation. I have heard so much about Brahma Kumaris. For last many years I have been seriously thinking, praying to visit this place, but somehow it took some time. Though in between I had the privilege to visit and participate in many programs of the Brahma Kumari centers in Bangalore, Mysore and Delhi. I'm thankful to Sister Dr. Bini for her consistent invitations to visit this place, especially on these auspicious occasions. We have been working together, Sister Bini, for the interfaith harmony, and keep on meeting in many international conferences within India and different parts of the world. She is one of the most wonderful members of the Brahma Kumari. She has been presenting beautiful speeches on many, many international conferences. I'm grateful to her. Without her, I think it would have not been possible for me to be present here and to meet Dadi Maas and to get their blessings and to have a glimpse of this unique organization, Brahma Kumaris. It has been a very amazing, unforgettable experience for me to visit the various services rendered by Brahma Kumaris. Yesterday I had to. I believe Brahma Kumari is the largest and the biggest spiritual organization. And I myself have a great, great admiration for Brahma Kumaris, because in my own humble way, I have been working very hard to provide education to the girls. I've been trying to uplift the status of girls and women in my own humble ways. And Brahma Kumari is the source of great inspiration for all girls and women. Unfortunately, in this world, there has been a lot of misconception, wrong views on the differences of the brothers and sisters or male, female. There has been a kind of belief and concept that women cannot achieve like men. This is a totally wrong perception, totally wrong view. That has been proved by the sister of Brahma Kumaris. What men can achieve can be achieved by all sisters. We can see it. There is so much to learn from here. It's such a great blessing for the whole world, not only for the sister, but for the brothers too. Yes, I believe, after seeing your programs and how all the sisters peacefully spreading the message of peace, love and compassion, and their great service to mankind in such a beautiful manner, I feel that Pram Puja Prajapita, the founder of this great organization, has brought heaven on earth. This headquarters of Brahma Kumari is a peace of heaven on earth. And before they think of going to heaven, they must come here and participate some of the programs and experience here. And then perhaps they will think that heaven and hell is not something geographical. Heaven and hell, heaven is up, hell is down, may not be correct. All are here. Heaven, we can experience divine life here and now. We can experience heavenly world here. It is a state of mind. Everything depends on mind. If we can have an organization like this, if we can have a spiritual masters like Dadi Maas to guide the mankind, then perhaps we can experience divine life here and now. We can experience divine world here and now. It itself is a heaven. What more we need? It's so wonderful, beautiful to be here and to experience the divine life here and now. And also, dear brothers and sisters, for all of us wish to experience peace, happiness, harmony, enlightenment, mukti, moksha. And for that, usually we look up in the sky or look somewhere else while it is within ourselves. Everything is within ourselves, but our search for that divinity, our search for that enlightenment, our search for the Buddhahood, always in a wrong direction. It is within here and we look out. It is here and we look there. That is why, though it is there, we don't find it. I want to share a story with you it's very interesting. I hope you will enjoy it. You know, before human beings were created or human beings were born on this earth, this world was much more beautiful, much more purer, much more peaceful. We can believe that. So, the God thought that something is missing. This world is so beautiful, full of flowers. Look at the shining stars in the sky. Look at the sunrise. Look at the sunset. Look at the different flowers, the mountains, the rivers, the ocean, and the songs of the birds. So wonderful, but something is missing. Why should I not create some human beings to appreciate and enjoy this beauty, natural beauty of the universe, this world? With this, the God created a few human beings and told them, my dears, I have created you to see and enjoy the beauty of wonders, you know, the natural beauty of this universe. Go, play, sing, dance, pray, meditate, enjoy this nature. They said, yes, Lord. When? The very next day somebody came and knocked at the door of the God for the first time. The God never experienced that. With a very inquisitive mind, the God went and opened the door, and he was surprised to see these few human beings whom he just created yesterday was standing there with a complaint that he said like this, he said like this. God told them, my dear human beings, have I not told you that I have created you to live in peace, in harmony, in love, and enjoy the beauty of this nature, the natural beauty, the wonder of this world. Never fight, never quarrel with each other. Go and pray and meditate and sing and dance and enjoy this beauty of the wonderful universe. They said, yes, Lord. The next morning again, somebody came and knocked the door slightly earlier and stronger than yesterday. The God, again with a very inquisitive, went and opened the door. He was surprised to see that same human beings were standing with much more complaint. And God again advised, have I not told you that I have created you to live in peace and harmony and enjoy this beauty of this wonderful universe? They said, yes, Lord. And the next day, third day, again, somebody came earlier and knocked the door much stronger. Almost the door was broken. And before open the door, the God realized that nobody else could be other than the nuisance human beings I created just 3 days before, he thought. And then God got convinced that now these human beings are not going to live in peace for themselves, nor they are going to allow me to live in peace. They are not going to listen to my advice. So what shall we do? God thought of going to hide from the human beings. And with this, God called for the emergency meetings with the minister and told the minister, I am in a serious trouble. I need your advice. The minister said, what are you talking, Lord? If you are in problems, difficulties, how would others? Please do not make such joke. It doesn't sound nice. And the God said, this is not the joke. I am serious. And the minister said, what is that? Please tell us. And he said, look, this world was so beautiful, so wonderful, so pure, clean, with the intention that they will live in peace and harmony, they will enjoy this beauty of this world. I created few human beings. But now, not even 3 days, they started bringing so much complaint, and I am fully convinced that they are not going to listen to my advice. They are not going to live in peace for themselves, nor they are going to allow me to live in peace. Now I need your help to go and hide a place where human beings cannot find. Then God stood up and said, Lord, why don't you go and move to the top of the Mount Everest? These human beings cannot go there. This is so cold, so high. And God said, no, that is not the safe place. This Tenzin and Hillary will be reaching there soon. That's not the safe place. And then another minister stood up and said, Lord, why don't you move on the moon? How the human beings can go to the moon? It's impossible for them to move, go to the moon. God thought for a while and said, no, that is also not safe place. This American will be reaching there soon. That's not the safe place. And then another minister stood up and whispered slowly, Lord, Why don't you hide in the hearts of the human being themselves? These human beings will be never be able to look within themselves. They will be looking and searching everywhere. They will go in search of in the Himalayan mountains. They will go in search of in the space. They will go in search of the ocean. They will go in search of the holy places, temples, mosques. They will fight and kill each other to find you in those places. But they will never be able to find themselves, you in within themselves. And the story says that the God said, "This is wonderful idea. Please give it confidence." Since then, the God has been hiding in the hearts of human beings. And look, when we have been searching elsewhere. And since the Brahma Kumari organization seems found the right place to go within yourself, looking at all the sisters moving around with this most clean white colored dress and all the service I see, this story came to me that this is really where God resides here, and the Brahma Kumari sisters found that where God resides. So without taking much time, I once again like to bring the warmest greetings from the Buddhist world to the most revered Dadi Matas, Matajis of Brahma Kumaris, all the sisters and brothers and all the members of the organization. Half of our population is the women in the world. In the past, somehow, unfortunately, the human society has been man-dominated. I think in the future I will not say female-dominated, but I'm sure our sisters are going to play a very, very important role, and Brahma Kumari will lead that in the future for more peaceful, more harmonious and global peace and harmony. And I'm sure Brahma Kumari will continue to progress and prosper in every nook and corner of this world. It has been truly my great fortune to come here to see, and I'm looking forward to have a close association with Brahma Kumaris. I am looking forward to send my students, especially the girl students, to the Brahma Kumari headquarters here and others branches to participate and to learn and get inspiration and confidence from the sisters. You know, unfortunately in the past, many girls think that women cannot achieve what men. Now when they visit these Brahma Kumari organizations and they see, without even listening much talk, but just by seeing, they will get confident that they can also do, they can also achieve what men can have achieved, these things. And with this, I once again like to appreciate my deep, deep appreciation for inviting me to be part of this very auspicious, and may the Brahma Kumari organization continues to grow far and wide and to continue to shine in every corner of this world. Let us come together, brothers, sisters. Let us work together. This world is in a great crisis. Only organization like this, like you all who are totally dedicated to spirituality for the well-being and happiness of the society, can bring peace and harmony in the world. I am great confident that Brahma Kumari and we all together can contribute a lot for the world peace. The world is in great turmoil, great danger. So only spiritual values, spiritual teachings of like the Pram Puja Parja Pita, we can think of bringing peace in the world. Thank you so much. Thank you so much.
बहुत बहुत शुक्रिया ब्राता एच एच भिखू संगसेना जी, बहुत दूर से हमारे बीच लद्दाख से पधारे हैं आपके शुभ विचारों के लिए, ब्रह्मा कुमारी के कार्य की तारीफ की, ब्रह्मा बाबा को याद किया, कितनी प्यारी मुस्कुराती हुई उनकी मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। भाई बहनों, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जिन्होंने इस कार्य को शुरू किया, अब सोचिए उनका व्यक्तित्व कितना आला होगा, जो दीपक रहा सदा रोशन उसने कितने तूफानों को संभाला होगा, जो प्यास बुझाता था सबकी, जरूर भरा हुआ प्याला होगा, जरूर भरा हुआ प्याला होगा।
आप उन द्वारा रोशन हमारी दादियों को, बड़े भाइयों बहनों को देके समझ सकते हैं कि कितनी रोशनी रही होगी उनमें। मैं आगे आमंत्रित करना चाहूंगा भ्राता मार्कंडेय अधिकारी जी को, वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एसएबी सैप ग्रुप। कृपया पधारे, अपने विचार हमारे बीच प्रस्तुत करें। स्वागत है आपका।
पूज्य दादी माँ और पूरा ब्रह्म कुमारी परिवार, मैं अपने परिवार की, अपने परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से ये बहुत ही एक शुभ अवसर मानता हूं कि आज इसी दिन आपने मुझे यहां बुलाकर मुझे इतना सम्मानित किया। आज के युग में जहां दिनों दिन परिवार की व्याख्या सिमुड़ती जा रही है, छोटी से छोटी होती जा रही है, उस समय में इतना बड़ा परिवार ब्रह्म कुमारी परिवार, कि इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है करके। और दिन पे दिन समाज में जितनी लोगों की असहिष्णुता बढ़ रही है, जितना संयम कम हो रहा है, उसी समय में ये ब्रह्म कुमारी परिवार से जो संदेश पहुंचाया जा रहा है पूरे विश्व को, और आज मेरी समझ में आया कि 135 देशों में इस परिवार की शाखाएं हैं और कुछ लाखों अनुयायी हैं। बहुत प्रसन्नतीय बात है। और जहां विश्व एक तरफ से एक बहुत ही संकट के दौर से गुजर रहा है, उसी समय में ब्रह्म कुमारी परिवार का मैसेज विश्व के लिए एक प्रेरणा स्रोत हमेशा बना रहेगा, ऐसी हमारी उम्मीद है और हमारा यकीन है। और विशेषकर मैं मेरे मीडिया के भाइयों से यह अनुरोध करूंगा कि आजकल आप कोई भी टीवी चैनल उठा के देखोगे तो आपको, आपका मन विचलित हो जाएगा। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी घटनाएं, एक चैनल से दूसरी चैनल आप सर्फ करोगे तो कुछ मन को विचलित करने वाले दृश्य और ऐसी घटनाओं का ज्यादा उल्लेख है। क्यों ना सब मिलके एक ऐसे परिवार का जो संदेश है वो समाज के बीच में प्रसारित करें, कि लोगों को ये भी पता चले। हालांकि भारतवर्ष में, विश्व में सभी ब्रह्म कुमारी परिवार से परिचित है, लेकिन जितना आप ज्यादा उसको माध्यम दोगे इतना मुझे लगता है कि लोगों के अंदर एक अच्छा मैसेज जाएगा, लोगों की यह भावना दृढ़ होगी कि समाज में सब कुछ बुरा नहीं हो रहा, कुछ अच्छा कार्य भी हो रहा है। और मुझे लगता है ये हर एक देशवासी की फर्ज है और मीडिया को उसका माध्यम बनना चाहिए। मुझे आशा है कि अभी जो ये 3-4 दिन से ये जो कार्यक्रम चल रहा है उससे बहुत ज्यादा से ज्यादा वो जो मीडिया उसको समय दे, उसको प्रसारित करें, समाज में एक अच्छा मैसेज पहुंचा है। और इसी के साथ एक बार फिर मुझे शुभ अवसर पर आमंत्रित करने के लिए मैं पूरे ब्रह्म कुमारी परिवार का पूरे हृदय से धन्यवाद अदा करता हूं। ओम शांति।
धन्यवाद भ्राता मार्कंडेय अधिकारी जी, बहुत ही सुंदर विचारों को आपने रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा भ्राता कैलाश अधिकारी जी को, जो कि डायरेक्टर गवर्नेंस नाउ हैं। कृपया यदि आप उपस्थित हैं तो पधारें, अपने शुभ विचार हमारे बीच प्रस्तुत करें। हम हृदय से स्वागत करते हैं आपका।
परम पूजनीय दादी जी और मंच पर उपस्थित सभी आगंतुक गण, सर्वप्रथम मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के उनकी 80वीं वर्षगांठ पे आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। और आप सबने बहुत ही स्नेह एवं मान के साथ यहां पर बुलाया, उसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। कर्तव्य निष्ठा एवं सेवा भाव से ओतप्रोत सभी ब्रह्म कुमारी भाई बहनों को मेरा सलाम। जब यहां आने का निमंत्रण मिला तब थोड़ा सा भी समय नहीं लिया हां कहने को, क्योंकि एक बहुत ही सकारात्मक वातावरण में आने का मौका प्राप्त हो रहा था। मैंने अपने बचपन से ब्रह्म कुमारी सेंटर देखा हुआ है, जहां पे हम बंबई में रहते हैं वहां से 5 मिनट की दूरी पर ही आपका सेंटर है। तो बहुत वर्षों से बाहर से गुजरता आया हूं, और जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ तो पता चला कि कई सारे मित्र हैं जो सेंटर में जाते हैं और उन्हें उनसे लाभ हुआ है। तो जब आपकी संस्था के बारे में और ब्रह्म कुमारियों के बारे में और जानने का मौका मिला तब हृदय बहुत ही प्रफुल्लित हुआ। जैसे कि मेरे पिताजी मार्कंड जी अधिकारी ने कहा कि आज का जो युग है, जहां पे हम पूरे विश्व में एक तनावपूर्ण वातावरण देख रहे हैं, और एक वैयक्तिक रूप में भी कहा जाए तो हर एक व्यक्ति अपने दिनचर्या में काम में इतना व्यस्त रहता है, इतना चिंतित रहता है कि वह कुछ मूल्यों को भूल जाता है। मूल्य जैसे सुख, शांति, कंटेंटमेंट, पीस ऑफ माइंड, ये सारी चीजों को वो कहीं ना कहीं उसके स्मरण से निकल जाती है, और ये चीज उसे भलीभांति याद दिलाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि ये सारी चीजें उसके भीतर ही सन्निहित है। अगर वो कुछ समय निकाल के इस चीज पे अगर ध्यान दे, अगर उसका ध्यान इस ओर केंद्रित हो, तो वो जान सकता है कि खुशी उसके भीतर ही है, और कैसे इस भावना को अपने हृदय में, अपने अंतःकरण में, अपने अंतःस्थल में कैसे वो उजागर कर सकता है, ये उसे दिशा एवं मार्गदर्शन दी जाती है। जैसे कि कुछ चीजों का मैंने उल्लेख किया, जैसे पीस ऑफ माइंड है, कंटेंटमेंट है, ये सारे शब्द हम सुनते आते हैं, लेकिन आज आप सबके बीच यहां पर आके इन चीजों का भलीभांति एहसास हुआ, एक फुलफिलिंग एक्सपीरियंस, एक बहुत ही पॉजिटिव एवं सकारात्मक वातावरण में क्या होता है वो आज मुझे पता चला। मैंने अपने जीवन में 26 बसंत देखे हैं, और आज आप सबके बीच एक तृप्ति का भास होना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यपूर्ण है। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ चीजें इंसान को अपने आंतरिक रूप से ही समझनी चाहिए, और इस मार्गदर्शन पर चलते हुए जो ब्रह्म कुमारी की पूरी संस्था, सभी भाई बहन और दीदियां जो काम कर रही है, उनको मेरा कोटि कोटि नमन। और इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते रहिए ताकि पूरे विश्व में एक सुख शांति का आप एक संदेश और पैगाम पहुंचा पाए, और मीडिया की ओर से वे जितना अपने माध्यम का इस के लिए उपयोग कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए। इसी के साथ ज्यादा समय न लेते हुए अपने इन दो शब्दों को विराम देता हूं, और फिर से सभी ब्रह्म कुमारी जो भाई बहन दीदियों ने जो यहां पर मुझे यहां पर आमंत्रित किया इतने मान से, इतने सम्मान से, उन सबका हाथ जोड़कर नमन करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।
धन्यवाद भ्राता कैलाश अधिकारी जी, बहुत ही प्यारे बड़े संक्षिप्त विचार आपने हमारे बीच रखे। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा भ्राता शैलेश कुमार जी, ग्रुप एडिटर पीटीसी न्यूज। आप अपने शुभ विचार, अपने मन की प्रेरणाएं हमारे बीच रखें। स्वागत है आपका।
नमस्कार। ओम शांति। यहां आकर मैं अपने अनुभवों को थोड़ा बांटना चाहता हूं, लेकिन इन अनुभवों को बांटने से पहले एक बात को मैं बहुत साफ शब्दों में आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं एक नास्तिक हूं, ईश्वर में विश्वास नहीं करता। अगर मैं इस बात को नहीं कहता तो जो मैं आगे कहने जा रहा हूं वो अधूरा रह जाता। पिछले दो दिनों से मैं इस आश्रम में हूं और इसके पहले भी एक बार आकर माउंट आबू के आश्रम में रह चुका हूं दो दिनों तक। वो क्या बात है, वो कौन सी चीज है जो मुझे यहां खींचकर लाती है अंदर से नास्तिक होते हुए भी, ईश्वर में विश्वास नहीं करते हुए भी। जो पहली चीज जिसको इस बार बहुत शिद्दत से मैंने महसूस किया ब्रह्मा कुमार दादा लेखराज ने 1937-1957 में जिस बात को महसूस किया, देश में बहुत सारे राजनीतिक दल और बहुत सारे समाज के काम करने वाले लोग बिल्कुल भी महसूस नहीं कर रहे थे। हिंदू धर्म जब जब जैसे जैसे मजबूत होने लगा, महिलाओं को दूसरे दर्जे में ढकेल दिया गया, स्त्री शक्ति की चर्चा तो की गई लेकिन वो जो मातृप्रधान समाज में जो शक्तियां उनके पास थी वो नहीं रह गई थी। घूंघट में रहना, शिक्षा नहीं प्राप्त करना, दादाजी ने इस बात को महसूस किया। मैं अक्सर सोचता था कि इसका नाम ब्रह्मा कुमारी क्यों है, जो संस्था जिन्होंने बनाई वो तो ब्रह्मा कुमार थे दादा लेखराज जी, तो क्यों है। धीरे धीरे ये फिलॉसफी मेरी समझ में आया कि उन्होंने इस बात को महसूस किया कि अगर बेहतर समाज बनाना है तो हमें मातृप्रधान समाज के गुणों को, उसकी शक्तियों को पहचानना होगा। और शायद यही कारण है कि उन्होंने अपने जीवन में ही तय किया कि स्त्रियां ही इस संस्था को का नेतृत्व करें और आगे ले जाएं। यह एक तरह से जो प्राचीन भारतीय समाज है जिसमें माताएं ही प्रधान होती थी, उसकी पहचान कराना है और उसको स्थापित करना है। और उसके बाद से मैं देखता हूं यहां हजारों हजार की संख्या में महिलाएं हैं, घूंघट नहीं है। अगर हिंदू समाज की कल्पना करें तो वो तो अनिवार्य हो जाता है। और स्त्रियों के हाथ में दादी जानकी जी, दादी हृदय मोहिनी जी, इनके हाथ में नेतृत्व है, उसके बावजूद उसके चलते ही यह संगठन शायद इतना विशाल हो सका है। जो आध्यात्मिक काम होते हैं निश्चित तौर पर बहुत सारे लोगों के लिए बहुत जरूरी काम है, वो जो ध्यान का काम है, राजयोग का काम है, वो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम है, लेकिन मुझे वो काम दिखाई देता है जो उस प्रदर्शनी में है। जो गांवों में खेती के विकास के लिए इस संस्था के लोग कर रहे हैं, जो अनपढ़ लोगों के बीच शिक्षा के लिए कर रहे हैं, जो वंचित लोगों के इलाज के लिए कर रहे हैं, अगर ईश्वर का काम है तो मेरी समझ से वो काम है। ऐसे मैं 21 या 22 विभाग देख रहा था और यही मुझे आकर्षित करता है, यही मुझे बार बार ये प्रेरणा देता है कि मुझे ऐसे लोगों के साथ बैठकर देखना चाहिए कि कितना कितने सेवा भाव से वो इस काम को करते हैं। दादी जी, जानकी जी, हृदय मोहिनी जी, सचमुच आप इस समाज को एक नई दिशा दिखा रही हैं और मैं इसके लिए आपको शत शत प्रणाम करता हूं। आपका ये काम आगे बढ़े और बहुत आगे बढ़े। एक दूसरी चीज जो मैंने महसूस की है, एक पत्रकार के तौर पर और एक खास तौर पर एक रिपोर्टर के तौर पर, मुझे अनेक संस्थाओं में जो धार्मिक संस्था हैं, जो आश्रम हैं, जो गुरुओं के स्थल हैं, मंदिर हैं, जाना पड़ता है। बड़े बड़े नेता वहां जाते हैं, जहां नेता जाएंगे, जहां मंत्री जाएंगे, वहां पत्रकार तो जाता ही है, तो मैं वहां जाता हूं। सच मानिए, ज्यादातर बाजार बन गए हैं, दुकानें खुल गई हैं, दुकान है, गेट से अंदर जाइए दुकानें दिखती हैं। मैं यहां आया, जो भाई मेरी मदद कर रहे थे, मैंने उनसे कहा कि मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं इतने सारे लोग सफेद कुर्ता पैजामा में हैं, मैं ये रंगीन कपड़े में हूं, तो मैं आप मुझे दुकान बताइए, मैं कुर्ता पैजामा खरीदना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा हमारे यहां तो दुकान है नहीं, आप आश्रम के बाहर सड़क के उस पार जाएंगे तो कुछ प्राइवेट दुकानें हैं, उधर से आप जो भी करना चाहें। तो मैंने कहा कुछ प्रसाद वगैरह की दुकान, तो उन्होंने कहा कि वो भी नहीं है प्रसाद आपके लिए, जो आप जाएंगे भोजन। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि प्रसाद क्या होता है। जब मैं ब्रेकफास्ट के लिए गया तो एक बहन साथ में थी, उन्होंने कहा कि आप ईश्वर का स्मरण कीजिए, या जिनको भी जिनका भी स्मरण करना चाहते हैं स्मरण कीजिए, ये प्रसाद में बदल जाएगा, आप इसे ग्रहण कर लें, हम तो कोई प्रसाद बेचते नहीं है। मैं देश के विदेश में भी एक संस्था में गया हूं जो कृष्ण के बारे में बड़ी बात करते हैं, डॉलर है तो प्रसाद लीजिए, नहीं तो नहीं है। सब बिकता है, तेल बेचते हैं, कहते हैं आंवले का तेल लगाओ ईश्वर मिल जाएंगे, चावल बेच रहे हैं, गेहूं बेच रहे हैं, आटा बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं। वैसे में आपने इसको बाजार में नहीं बदलने दिया, एक शुद्ध सामाजिक संस्था रहने दिया, इसलिए दादी जी आपको प्रणाम, दादाजी आपको भी प्रणाम। कहीं तो कुछ बचा रह जाए समाज में, जिसे हम कहें कि ये दुकान नहीं है, ये बाजार नहीं है, यहां बिकता कुछ नहीं है, यहां जो है सब सेवा के लिए है, सब देने के लिए है। और ऐसा मैंने महसूस किया। अब एक तीसरी बात, मैं जानता हूं कि समय की कमी है, बहुत संक्षेप में ही तीसरी बात करके खत्म करना चाहता हूं। जो आप ओम शांति कहते हो, इसकी बड़ी जरूरत है, और आने वाले 10-15 सालों में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होने वाली है। 2 विश्व युद्ध हुए थे, हम सब जानते हैं, बाजार पर नियंत्रण के लिए, लेकिन वो मैं अगर क्रूड लैंग्वेज में बोलूं तो ईसाइयों के बीच थे, यूरोप के देश थे जो आमतौर पर लड़ रहे थे, उसमें बाकी लोग कुछ कुछ जुड़े हुए थे। अगला युद्ध, पहले तो मैं ये संक्षेप में कहना चाहूं कि कब होगा, कब होने के आसार हैं, तब बोलूंगा कि किन के बीच हो सकता है। अगले 15 से 20 सालों के बीच ये पेट्रोल और डीजल पर चलने वाले जिन मोटर गाड़ियों पे हम चल रहे हैं ये खत्म हो जाएंगी, जिसको कहते हैं टोटल डिसरप्शन। एक समय में बैलगाड़ी, इक्के, ये सब थे, ये सब खत्म हो गए, उनकी जगह ले ली मोटर गाड़ियों ने। 2 ऊर्जा के स्रोत आए, एक डीजल पेट्रोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिसको कहते हैं वो, और एक कोयला, दोनों खत्म होने जा रहा है। आपने सुना होगा कि टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार बनाए हैं जो 600 किलोमीटर तक एक बार चार्ज करने के बाद चलने वाला है। गूगल इस पे बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कर रहा है, और कुछ तो पर्यावरण के कारण और कुछ तेल की जो कमी होती जा रही है उसके कारण। तो अगले 10, 15 से 20 सालों के भीतर पेट्रोलियम और कोयला, इन दोनों की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी, और दुनिया का एक बड़ा युद्ध इसलिए टल रहा है कि दुनिया के कुछ देश नहीं चाहते कि तेल के कुएं इस वक्त खत्म हो जाए। ये संकेत में ही बोल रहा हूं मैं, लेकिन जो जिस तरह का एक धार्मिक आधार पर विश्व में बंटवारा शुरू हो रहा है वो बहुत खतरनाक मोड़ की तरफ है। जिस दिन पेट्रोलियम की जरूरत नहीं हो जाएगी रहेगी उस दिन कुछ देशों पर बड़े भयानक हमले हो सकते हैं। वो दूसरा विश्व युद्ध जो कुछ भी था उससे बहुत भयानक होगा। जितने हथियार दूसरे विश्व युद्ध में थे उससे कहीं ज्यादा मारक, कहीं ज्यादा भयानक और कहीं ज्यादा एक जगह पर बैठकर नियंत्रित होने वाले हथियार आ गए हैं। उन्माद दोनों तरफ से है। एक तरफ से कोई ये कहता है कि मैं पूरी दुनिया को एक ही धर्म में जब तक बदल नहीं दूंगा तब तक चैन नहीं लेने वाला, हालांकि वो अपने ही धर्म में अपने ही धर्म के लोगों को मार रहे हैं। दूसरी तरफ दूसरे धर्म के लोग हैं जो अपने बचाने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में कौन होगा जो सिर्फ शांति की बात करेगा, जो ये कहेगा कि इस पे धीरज रखो, जो जिस तरह से सोलर एनर्जी, जो पवन एनर्जी से लेकर के जो सारे सुन रहे हैं, जिस दिन इसकी जरूरत खत्म हो जाएगी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, और जब जिस दिन कुछ देशों को लगेगा कि अब तेल के कुएं रहे या नहीं रहे उनकी निर्भरता इस पर नहीं है, उस दिन वो भयानक हमले शुरू हो सकते हैं। तो ऐसे में जो ये शांति की कोशिश, जो शांति की प्रक्रिया आगे बढ़ाने में और ऐसे लोगों को तैयार करने में ब्रह्मा कुमारी संगठन संस्था काम कर रही है, उसका नमन करता हूं। आज जितनी जरूरत है 10-15 सालों बाद और ज्यादा जरूरत है। मैं जानता हूं कि समय कम है, मैं फिर एक बार नमस्कार करता हूं। मैं नास्तिक आया था, नास्तिक ही जा रहा हूं, लेकिन अगर एक नास्तिक के लिए आपका दरवाजा खुला रहेगा तो मैं फिर आऊंगा। नमस्कार।
बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता शैलेश कुमार जी आपके इतने शुभ और इतने आस्तिक विचारों के लिए। भाई बहनों, उन्होंने बाजार की बात की, हमें बाबा ने, हमारी बहनों ने सदा यही सिखाया है कि हालात कुछ भी हो नजरिया अच्छा होना चाहिए, हालात कुछ भी हो नजरिया अच्छा होना चाहिए, बाहर चाहे झूठ का बाजार हो दिल सच्चा होना चाहिए। और यहाँ का हर एक बशिंदा, हर एक विद्यार्थी, हर दरिया उस सागर में समा रहा है और यहाँ हर कोई उसका प्यार कमा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता शैलेश जी। वैसे नास्तिक लिखा जाए तो आस्तिक उसमें समाया ही होता है, तो हम आपको आस्तिक ही मानते हैं और आपके लिए सदा यहाँ के द्वार खुले हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर अर्चिका दीदी जी को। आप स्पिरिचुअल एंड मेडिटेशन गुरु हैं, दिशा चैनल की आप MD हैं और स्पिरिचुअल चैनल है दिशा, साथ ही साथ आप आदरणीय माननीय सुधांशु महाराज जो गुरु जी हैं उनकी ज्येष्ठ पुत्री है। आपको मैं निवेदन करूंगा कि इस पावन मंच से अपनी प्रज्ञा को, विचारों को प्रकट करें। स्वागत है आपका।
ओ गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ अपने सद्गुरुदेव को मैं प्रणाम करती हूँ। मैं ब्रह्म कुमारी को प्रणाम करती हूँ, दादियों को प्रणाम करती हूँ, मंच पर विराजित गणमान्य अतिथियों को प्रणाम, सभी पवित्र आत्माओं को प्रणाम, मातृशक्ति भद्र पुरुषों। जीवन जीना एक सुंदर कला है, जो इस कला में पारंगत हो जाता है वह अपने जीवन को सौंदर्य से परिपूर्ण कर देता है, उसके जीवन में संगीत आने लगता है, उसके जीवन में कोमलता आने लगती है। जैसे हम किसी कलाकार को देखते हैं, जब वह मूर्ति बनाता है तो कितने सुंदर ढंग से उसकी आंखें बनाएगा, उसका श्रृंगार करता है, बहुत सुंदर सुंदर रंग भरता है और मूर्ति को सजाता है। बिल्कुल इसी तरह से हमारा जो जीवन है वह भी अनगढ़ पत्थर की तरह है। अब उसमें से हम देवी की प्रतिमा को प्रकट करते हैं, देवताओं को प्रकट करते हैं, या फिर हम उसमें से राक्षस को प्रकट करते हैं, ये सब कुछ हम पर निर्भर करता है। हम क्या चाहते हैं अपने जीवन से? क्या हम अशांति चाहते हैं या फिर हम शांति के मार्ग पर चलना चाहते हैं? मनुष्य ने अपने जीवन में भौतिक डेवलपमेंट बहुत की, वह चांद सितारों तक पहुंच गया और उससे भी आगे जाने की योजना हो रही है। मंगल ग्रह तक हम पहुंच गए, हमने समुद्र की गहराई नाप ली, पर्वतों को देख लिया, हमने सारी चीजें देखी। मनुष्य के अंदर क्या शक्तियां हैं, मनुष्य क्या है, हम वह भी कामयाब हो रहे हैं उसमें। परंतु इस समय डॉक्टर राधाकृष्णन की एक बात हमें याद आती है कि मनुष्य ने पक्षियों की तरह उड़ना तो सीख लिया, मछली की तरह तैरना सीख लिया, परंतु इस धरती पर जिया कैसे जाए यह मनुष्य ने सीखा ही नहीं, और यही भूल हो जाती है। जब हमें जीवन जीना ही नहीं आएगा तो हम कैसे आनंदित हो पाएंगे? नीरस जीवन कोई जीवन है? तो जीवन में रस आए, जीवन में शांति आए, इसके लिए हमारे ऋषि मुनि शुरू से प्रार्थना करते रहे हैं, हे प्रभु हमें सुख दो, हे प्रभु हमें शांति दो। परंतु मनुष्य ने क्या पकड़ा? मनुष्य ने सुख सुविधाओं को बढ़ाने की चीजें सोच ली और शांति उसको भूल गया। और जैसे ही हम शांति को भूल जाते हैं, ये सुख संपदा, ये संपत्ति, सबका आधार क्या है? सबका आधार है शांति। शांति होगी तो आप चीजों का भोग कर पाएंगे, जीवन में आनंदित हो पाएंगे, और शांति नहीं तो कुछ भी नहीं। तो इसलिए शांति की आवश्यकता है। हम देख रहे हैं व्यक्ति व्यक्ति से लड़ता है, देश देश से लड़ते हैं, सब जगह अशांति का माहौल है। इस समय जरूरत है कि मनुष्य ऐसी कला सीख पाए जिससे वो शांत हो पाए, उसके चेहरे पर मुस्कान तो आए। लोग तो मुस्कुराना भी भूल गए हैं, मुस्कुराने को भी कहो तो उनकी हृदय से, उनके प्राणों से वह आनंद, वह मुस्कान आती ही नहीं है। तो मुस्कुराता वह है जो शांत होता है, आनंदित वह होता है जो शांत होता है, और जो शांत होगा उसका शरीर भी सही विकसित हो पाएगा, उसके घर में प्रेम आ पाएगा, उसके संगठन में शक्ति आएगी। हम देखते हैं कि जिन फैक्ट्रीज में कलह होती है, जिन संस्थाओं में कलह होती है, वहां कोई डेवलपमेंट नहीं होती है, एक दूसरे पे भरोसा टूटता है, संगठन की शक्ति वह टूटने लग जाती है, और उसके बाद कोई शांति नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई सक्सेस नहीं। तो सक्सेस चाहते हो तो शांत होना सीखो, आगे बढ़ना चाहते हो तो शांति की आवश्यकता है। और यह शांति मिलेगी कैसे? अब बात आती है कि शांत होना इतना आवश्यक है तो शांति मिलेगी कैसे? शांति मिलती है जब हम सबसे पहले अपने आप को व्यवस्थित करते हैं, अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं। यदि हम देख रहे हैं कि जिंदगी में व्यथाएं हैं, पीड़ाएं हैं, दुख हैं, तो जरूरी है व्यवस्था को बनाना, अपनी लाइफ को मैनेज करना। कहते हैं समाज कुछ भी नहीं है, एक एक व्यक्ति से समाज बनता है, एक एक इंडिविजुअल से सोसाइटी बनती है। तो यदि एक एक व्यक्ति पूरा प्रयास करे, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए, इनर ट्रांसफॉर्मेशन, तो इस पूरे विश्व में बदलाव आ सकता है, वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो इनर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कीजिए, अपने भीतर से शुरू कीजिए, डिसिप्लिन बनाइए। जो लोग अपने से प्रेम करते हैं और जो विश्व में बदलाव चाहते हैं वो डिसिप्लिन को अपनाते हैं। गांधी जी ने कहा था कि यदि आप समाज में परिवर्तन चाहते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति को स्वयं को बदलना पड़ेगा। तो स्वयं से शुरुआत हो, अपने से शुरुआत हो, और हर समय शिकायत ना करें, मुझे यह नहीं मिला, मुझे वह नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे ऐसा कहा गया। नहीं, आप धन्यवाद के भाव से भरें, अनुग्रह, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। मैंने सुना है दो साधुओं के बारे में, वह पहाड़ में रहते थे, गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाते। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी, जब अपने झोपड़े में पहुंचे तो देखते हैं कि आधा झोपड़ा उड़ गया। तो जो यंग साधु था, जो शिष्य था, वह रोने लग गया, कहने लगा, इन्हीं चीजों को देखकर भगवान से विश्वास उठ जाता है। हम गरीब लोग, हमारा एक ही झोपड़ा, दिन रात प्रार्थना करते हैं, दिन रात प्रभु तेरे भजन में लगे रहते हैं, और तूने हमारे साथ यह किया, हमारा झोपड़ा, आधा झोपड़ा उड़ा दिया। ये बारिश के दिन है, हम रात को कैसे सोएंगे, सर्दी लगेगी, बीमार पड़ जाएंगे, हे प्रभु तूने क्या किया हमारे साथ। परंतु दूसरी ओर जो उसका गुरु था, वह चुपचाप कोने में बैठा हुआ, हाथ जोड़कर ऊपर आकाश की तरफ देखते हुए भगवान से धन्यवाद कर रहा था कि हे प्रभु तू कितना दयालु है, तेरी ये हवाएं कितनी दयालु हैं, तू चाहता तो हमारा पूरा झोपड़ा उड़ा सकता था, परंतु भगवान तूने इतनी कृपा की है, हमें बचाया, तेरी हवाएं इतनी बेरहम हैं, ये चाहती तो सब कुछ नष्ट कर देती, लेकिन जो बच गया वो सिर्फ तेरी कृपा से था। तो ऐसा भाव, ऐसा ग्रैटिट्यूड, ऐसा अनुग्रह जिसके जीवन में आता है, वह शांत रह सकता है, खुश रह सकता है, और उसी को जीवन जीना भी आता है। नहीं तो लोग दुख में ही पड़े रहते हैं, एक दूसरे से क्रिप करते हैं, इरिटेट होते हैं, शिकायत करते हैं, तुमने यह किया, और चीजों को पकड़ कर बैठ जाएंगे, माफ नहीं करते। तो माफ करना भी सीखिए, फॉरगिव कीजिए, फॉरगेट कीजिए, और सबको अपनाइए, प्रेम का भाव आपके हृदय से निकले, और पूरे विश्व को आप अपना पाएं, पूरे विश्व को प्रेम दे पाएं, इतना प्रेम आपके अंदर से आए। और याद रखिए, 24 घंटे में से यदि आप 24 मिनट अपने लिए निकाल लें, सिर्फ 24 मिनट, और उस समय आंखें बंद करके अपने भीतर झांकें, किसी चित्र को ना देखें, किसी भगवान को ना देखें, बस अपने अंदर के स्रोत को देखें। शरीर हम नहीं, मन हम नहीं, बुद्धि हम नहीं, हम इन चीजों से परे एक आत्मा, एक लाइट है, बस भीतर भीतर डूबते जाएं, अपने ध्यान में डूबते चले जाएं। मैं विश्व के कोने कोने में जाकर ध्यान कराती हूँ, लोगों को बताती हूँ किस प्रकार से मन शांत किया जाता है, कैसे आप अपने प्राणों में वह स्पंदन कर सकते हैं, किस तरह से प्रेम जागृत कर सकते हैं, मेरी कोशिश रहती है। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी अपने भीतर झांके, अपनी आत्मा से जुड़े, वह परमेश्वर, वह परम स्रोत है ऊर्जा का, प्रेम का, शक्ति का, आनंद का, उस शक्ति से जुड़ जाइए। फिर देखेंगे भीतर के जो झरने बहेंगे प्रेम के, आनंद से भर देंगे आपके जीवन को, फिर कहीं नहीं जाना पड़ेगा, किसी से कुछ नहीं पूछना पड़ेगा, आपका जो आंतरिक गुरु है, आपके भीतर की जो शक्ति है, वही आपको गाइड करेगी कि संसार में कैसे जीना है, संसार में कैसे आगे बढ़ना है। फिर आप सक्सेसफुल होते जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, परंतु जरूरी है ट्रांसफॉर्मेशन, इनर ट्रांसफॉर्मेशन, और वो शुरू होगा आप सभी से, एक एक व्यक्ति से। और एक एक व्यक्ति अगर निश्चय कर ले, मैं शांत रहूंगा, प्रेम के विचारों को फैलाऊंगा, सारे जगत में प्रेम को फैलाऊंगा, शांति को फैलाऊंगा, तो ये पूरा जो समाज है ये स्वर्ग बन जाएगा, रहने लायक बन जाएगा। और जो अच्छी आत्माएं होती हैं, पवित्र आत्माएं होती हैं, उनका दायित्व है कि समाज के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस को फैलाते चले जाएं, पूरे विश्व को अपनाते चले जाएं। जब बुरी ताकतें एक साथ मिलकर कार्य कर रही हैं इस संसार को नष्ट करने के लिए, तो अच्छे लोगों का भी कर्तव्य है कि वह भी एक हो जाए और एकजुट होकर इस पूरे विश्व को सुंदर बनाने का कार्य करें। और इसमें मैं देख रही हूँ प्रजापति ब्रह्म कुमारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वह इस विश्व को सुंदर बनाने के लिए, स्वर्ग बनाने के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं, मैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मेरा प्रेम, मेरा स्नेह आप सभी के साथ है। सभी को हरि ओम, ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अर्चिका दीदी जी आपके इन सुंदर पावन विचारों के लिए। माना कि दोस्त तुम्हारी जिंदगी में आधे अधूरे अफसाने बहुत हैं, माना कि तेरी जिंदगी में दोस्त आधे अधूरे अफसाने बहुत हैं, लेकिन इस दुनिया में खुश रहने के बहाने बहुत हैं। बांटने की बात की और दोस्तों बांटने की होती है जिनकी अदा, वो दिलों में जिंदा रहते हैं सदा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं चाहूंगा कि हमारी बहनें आएं, भ्राता जी, मृत्युंजय जी, आदरणीय मृत्युंजय भाई जी, हमारे जो मीडिया के गेस्ट आए हैं उनका फेलिसिटेशन होगा, कृपया पधारें। मैं फेलिसिटेशन के लिए भ्राता मार्कंडेय अधिकारी जी सम्मान होगा। साथ ही साथ मैं रीडिंग ऑफ साइटेशन के लिए बुलाना चाहूंगा डॉक्टर बी के युधिष्ठिर भाई जी को, एग्जीक्यूटिंग मैंगर एजुकेशन विंग।
ओम शांति। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल मीडिया पर्सनालिटीज फॉर देयर अचीवमेंट एंड एक्सीलेंस इन मीडिया एंड फॉर देयर एक्शन इन डेवलपिंग ए बेटर वर्ल्ड। Now I am going to read the citation for the awards. We greatly appreciate you for your sincere and dedicated media services in promoting the true spirit of journalism. We sincerely acknowledge your significant roles in informing, educating and enlightening the masses about the various affairs of the world. We also felicitate you for your pragmatic contributions you have made for the welfare, development and progress of the people and country as a whole and the world at large, which are quite relevant and will go a long way in setting the society and making the world a better place to live in. Your useful works and activities in the world of media, which has been acclaimed as the fourth pillar of democracy, have been quite commendable, memorable and worthy of respect and reverence. Let the incorporeal Godfather, Supreme Soul Shiva, Angelic Pitasri Brahma Baba, the corporeal founder of the Brahma Kumaris movement and the divine family of Brahma Kumaris, shower their blessings upon you for your long, healthy, happy and blissful life. Om Shanti. Thank you again.
आदरणीय भ्राता मृत्युंजय जी, बड़े प्रेम और सम्मान के भावों से भर के हमारे जो मीडिया से मेहमान पधारे हुए हैं उनका सम्मान कर रहे हैं। टीवी टुडे ग्रुप की जो ओर से कलीपुरी जी की जगह उनकी पूर्वा मिश्रा को अवार्ड दिया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है भ्राता मृत्युंजय जी देते हुए। कार्यों को, किसी के गुणों को सराहना, ये भी मूल्यों में ही आता है। सर्व के सहयोग से ये सुखमय संसार हो सकता है। कैलाश अधिकारी जी का सम्मान किया गया। बहन अर्चिका दीदी जी का सम्मान हो रहा है। आध्यात्मिक चैनल दिशा की आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। टोडे ग्रुप की ओर से पूर्वा मिश्रा जी को सम्मान दिया जा रहा है। कलीपुरी जी यहां उपस्थित नहीं है। भाई बहनों, इस पावन अवसर पर जो हमारे मेहमान सभी पधारे हुए हैं, हमारे जो वक्ता हैं आज, सभी अपने अपने क्षेत्रों में बहुत आला हैं, अपनी उच्च अवस्था को प्राप्त किए हुए हैं। सभी का सम्मान, सभी का स्वागत प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। अब मैं ग्रीटिंग्स के लिए, शुभकामनाओं के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा भारत के मशहूर हमारे जस्टिस वी ऐश्वर्या जी को, फॉर्मर चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, जो कि नई दिल्ली से पधारे हैं हमारे बीच। हम करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं कि शुभ अवसर पर अपनी शुभकामनाएं हमारे बीच रखें।
ओम शांति। आज तीसरा दिन है ब्रह्मा कुमारी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कम कल्चरल फेस्टिवल 80 साल का एनिवर्सरी मना रहा है तीन दिन से, जो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी एलके अडवाणी जी और ऑनरेबल मंत्री कलराज मिश्रा जी और मंच पर उपस्थित हमारे दादियों के सामने ब्रह्मा कुमारी का बहुत प्रशंसा हो रहा था अपने तीन दिन से, दादा लेखराज की, दादी जानकी जी की। मगर मैं यही बोलना चाहता हूँ, ये अच्छी बात है ब्रह्मा कुमारी की प्रशंसा करना और इतनी उसकी और प्रशंसा करना, मगर इसके पीछे कौन है उसकी बारे में ये दो शब्द मैं बोलना चाहता हूँ। जो दादा लेखराज एक निमित्त है, क्योंकि जो दादा लेखराज द्वारा ये ज्ञान दिया है स्वयं परम पिता परमात्मा ईश्वर ने दिया है, जो गीता ज्ञान, ये गीता ज्ञान ये ब्रह्मा का तंत्र की आधार से दिया है। एक ब्रह्मा को तैयार करके वो ही ब्रह्मा को फिर विष्णु बनाने वाला वो ईश्वर है, कृष्ण की बनाने वाला वो ईश्वर है, मगर ये 3 करोड़ देवताएं नहीं तो कोई भी देवी देवताएं खुद नहीं बना, मगर ईश्वर ने बनाया, वो बना, अभी ये बन रही है, यही है उसका परमात्मा का ये ज्ञान। क्योंकि इसी के बारे में, जो अपने परमात्मा के बारे में अगर अपन मालूम करे, खुद के बारे में मालूम करे, ये तो परिवर्तन होता है। ये भाई ने बोला सामने मैं नास्तिक हूं, दुनिया में ये भाई 720 करोड़ में नियरली अबाउट 719 करोड़ नास्तिक है, क्योंकि खुद को नहीं जानते हैं, खुदा को नहीं जानते हैं, उसको नास्तिक बोलते हैं। क्योंकि जो आस्तिक है, खुद को जानते हैं, खुदा को जानते हैं, वो आस्तिक बोल आस्तिक समझाया समझते हैं। क्योंकि आस्तिक आप अकेला नहीं भाई साहब, मगर पूरा दुनिया ही नास्तिक है। उस वास्ते स्वयं परमपिता परमात्मा ये अपने को आस्तिक बनाना, अपने को अस्तित्व का स्मृति दिलाना, ये कार्य चल रहा है। कोई ये ब्रह्मा कुमारी से एक निमित्त बना हुआ है, परिवर्तन आंतरिक रीति से हो रहा है। क्योंकि आत्मा विचित्र है, परमात्मा भी विचित्र है, मगर वो सर्वशक्तिवान है, वो पतित पावन है, ये त्रिमूर्ति शिव भगवान वाचा चल रहा है। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी जो नाथ ईश्वर है, वो अजन्मा अभोक्ता अयोनी, वो ज्ञान सागर प्रेम सागर शक्ति सागर, नया ज्ञान से नया युग बन रहा है। नया युग जब बनता, हम उसकी ईश्वरी की बच्चे अपने नया गुण धारण करके, दैवी गुण धारण करके, सच्चाई सफाई से रहते हैं, ये दुनिया बदलती है। अभी दुनिया बदल रहा है, इसकी यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। 10 लाख ब्रह्मा कुमारियों ने कोई भी झूठ नहीं बोलता, कोई भी हिंसा नहीं करता, कोई भी संकल्प, कोई भी अपने वाचा कर्म और कोई भी विरुद्ध नहीं करता। जो हिंसा परमो धर्मम दैवी गुण धारण करके रहता है, मुझे ये ज्ञान मिला अपने 17 साल पीछे। एक न्यायमूर्ति, प्रधान न्यायमूर्ति 14 ईयर्स 69,000 केसेस डिसाइड किया, किसकी प्रभाव में, झुकाव में, और किसकी कोई भी अपने आके एक केस भी डिसाइड नहीं किया। और मैं ऐसा लोगों के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं, क्या पीता, क्या सोचता, क्या करता, एक कुली जीवन है ब्रह्मा कुमारी इसका। क्योंकि ये खूबी खुद की नहीं है, मगर वो ईश्वर की ये खूबी है, ईश्वर की ज्ञान है, ये शक्ति ईश्वर की है। एक ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये दादा लेखराज का नहीं है, हमारे दादी की नहीं है, क्योंकि ईश्वर चला रहा है ये अपने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी को। अगर ये समझे दुनिया, अगर ये फर्क है, ये सही भी एक अनसीन शक्ति है, वो सर्वशक्तिवान है। क्योंकि ये स्पिरिचुअल नॉलेज जो है, क्योंकि आंखों को दिखता नहीं, ये महसूस करने वाली है, ये अद्भुत चीज है। क्योंकि दुनिया में देखो, मैं कौन बात, मैं यही अपने माननीय इज एक्सेलेंट से गवर्नर इज कमिंग, यही मेरे विनती है भाई जी, आपको खुद को पहचानो, खुदा को पहचानो। एक आप एक आत्मा है, एक बिंदु स्वरूप है, वो परमात्मा पे बिंदु स्वरूप है, मगर अपन जनन मरण में आते, वो जनन मरण में नहीं आते। 7 घंटे का कोर्स है ये लेके सचिव के, आप सचिव में आप सीट खाली है, देवता बन सकते हैं, स्वर्ग इसको बना सकते हैं। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जस्टिस भी ऐश्वर्या जी, बहुत ही हमें सूक्ष्म में वो लेके गए, स्थूल के पीछे जो सूक्ष्म है उसका उन्होंने चित्रण हमारे सामने किया है। और हमारे लिए अति हर्ष की बात है, खुशी की बात है कि गुजरात के राज्यपाल आदरणीय भ्राता ओपी कोहली जी हमारे बीच
पधार रहे हैं, हम करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं। ऑनेबल गवर्नर ऑफ गुजरात राधा श्री ओपी कोहली जी, स्वागत है आपका। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय आपका हृदय से स्वागत करता है। ये सभागार आपके आने से और सुगंधित हो गया, खिल गया। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत ही हर्ष के पल आज के हमारे मुख्य मेहमान भ्राता ओम प्रकाश कोहली जी, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ गुजरात, आदरणीय सरला दीदी जी भी पधारी हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के गुजरात के सेवा केंद्रों की संचालिका हमारी आदरणीय। मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम जनगणमन राष्ट्रीय गान के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जिसका निर्माता है, संस्कृति के मिलने वाला आदर से पहले झुक जाता है, जर्रे जर्रे में ज्ञान है जिसके, नाम भारत आता है, नाम भारत आता है। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि गुजरात प्रदेश के राज्यपाल भ्राता ओम प्रकाश कोहली जी, आदरणीय भ्राता जी, आज हमारे बीच है। बड़े हर्ष का पल है। मैं अपनी बहनों से नम्र निवेदन करूंगा कि भ्राता जी का स्वागत पुष्प गुच्छों के द्वारा किया जाए। बिल्कुल पास का ही प्रांत गुजरात अपनी संपन्नता के लिए मशहूर है, और ऐसे महान कार्यकर्ता जब वहां मौजूद होते हैं तो प्रदेश की संपन्नता और बढ़ती है, और उसका आसपास के क्षेत्रों पर भी पूरा असर पड़ता है। आदरणीय भ्राता मृत्युंजय जी, गुजरात के राज्यपाल ऑनरेबल श्री ओपी कोहली जी का स्वागत करते हुए पगड़ी पहनाम करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। आप आए, ये हवाएं महकने लगी हैं। सरला दीदी जी का भी सम्मान हो रहा है, राजयोगिनी सरला दीदी जी, हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की बड़ी स्थापित स्तंभ है, बड़ा योगदान है इनका। द्वारा मृत्युंजय जी बाकी मेहमानों का सम्मान करते हुए पगड़ी सम्मान का प्रतीक है, इज्जत का प्रतीक है और जिम्मेवारी का प्रतीक है। पुष्पहार सदा सुगंधित रहे, आपकी विजय हो, इस बात का प्रतीक है। प्रातः गोविंदर गुप्ता जी, स्पीकर, लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू एंड कश्मीर, मृत्युंजय भाई जी स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय रानी दीदी जी भी पधारी हैं, हम उनका भी हृदय से स्वागत करते हैं। बिहार के हमारे जोन की संचालिका ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी रानी दीदी जी, बड़ी हर्ष की ये बेला है, संगीत से हवाएं चहकने लगी हैं और मेहमानों के पधारने से हवाएं महकने लगी है। अब मैं आदरणीय भ्राता राजयोगी मृत्युंजय भाई जी से निवेदन करूंगा कि पधारें और गुजरात के हमारे माननीय गवर्नर भ्राता ओम प्रकाश कोहली जी का अक्षय शब्दों से, पुष्प गुच्छों से, शब्दों के पुष्पों से, हृदय से स्वागत करें।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के एक ऐतिहासिक दिवस 80 साल का वार्षिक उत्सव की समारोह में इस समय हमारा बीच में ओम प्रकाश कोहली जी, गुजरात और मध्य प्रदेश की गवर्नर महामहिम हमारा सम्मुख में उपस्थित है। आपको मैं दादी जी की तरफ से, समस्त विश्व ईश्वरी परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। मैंने जिंदगी में बहुत गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स, अन्य डिग्निटीज को मिला है, परंतु आप ओम प्रकाश कोहली साहब जैसा व्यक्तित्व को मैंने नहीं देखा। इसका एक सैंपल और एग्जाम्पल, अब उसके सामने महिमा करने की बात नहीं है, मैं वास्तविक सच्चाई की बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं कुछ दिन पूर्व आदरणीय भ्राता जी को इस सम्मेलन की निमंत्रण देने के लिए गए थे, हमारा सरला दादी जी भी थे, हम सभी थे, मिल रहे थे। उन्होंने एक शब्द यूज किया, आपका आदेश क्या है। मैंने बोला हम आदेश देने के लिए नहीं आया है, आपको उपदेश देने के लिए नहीं आए, आपसे प्रार्थना करने के लिए आए, निवेदन करने के लिए। आप राज्य के गवर्नर है, हमको आदेश देने का मेरे हक नहीं, अधिकार नहीं है। मैं केवल ब्रह्म कुमार हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, परंतु मैं आदेश नहीं दे सकता, अनुरोध कर सकता, रिक्वेस्ट कर। मैं इस बात इसके लिए कह रहा हूँ, उसके अंदर नम्रता कितनी है, विनम्रता कितनी है, व्यक्तित्व कैसे बड़ा बन सकता है, इसका एक उदाहरण है। बड़ा बनने की जो मूल वैल्यूज है, इसके वैल्यूज का वैल्यूज इन्होंने पहचाना है, उसके कारण है। बाबा ने कहो, उनकी कर्तव्य के कहो, उनकी सेवानिष्ठ कहो, उनका गुण कहो, उनको आज इस पद पर बिठाया। इसके लिए हम सबको ये सीखने की बात है, हम सबको अनुकरण करने की बात है। मैं इसके लिए मैं पुनः पुनः दाता जी को, ऐसी विशेष हस्ती को, ऐसे विशेष महान अस्थि को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। और अन्य व्यक्ति सभी को स्वागत हुआ है, आप सबको भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ओम शांति।
धन्यवाद भ्राता मृत्युंजय जी, आपने माननीय राज्यपाल जी के व्यक्तित्व की बात कही, उनकी नम्रता, उनकी सादगी की बात कही। दोस्तों, सादगी नहीं होती कभी भी आसान, बड़ी तपस्या से बनता है एक सरल इंसान। ऐसे कर्मनिष्ठ, संकल्पनिष्ठ, मर्यादानिष्ठ राज्यपाल हमारे बीच हैं। हम बड़े ही आज प्रसन्न हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं भ्राता कविंद्र गुप्ता जी से निवेदन करूंगा, जो कि स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू एंड कश्मीर हैं, हमारे बीच पधारें इस पावन अवसर पर, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के इस पावन मंच पर अपने विचार, अपने शुभ भाव व्यक्त करें। स्वागत है आपका, हम करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं।
ओम शांति। आज के 80 साल बीत जाने के बाद प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, मंच पर प्रमुख रूप से उपस्थित गुजरात के महामहिम राज्यपाल श्री ओम प्रकाश कोहली जी, मंच पर बैठी हुई हमारी दादी जी, अन्य ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ अतिथिगण, इस मंडप में उपस्थित देश भर से आए हुए भक्तजन, सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं इस संस्था का, जिन्होंने इस बहुत विशाल कार्यक्रम में बुला करके मुझे सम्मान दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 80 वर्ष पहले जो एक पौधा लगाया गया था, आज वो बट वृक्ष बनकर हमारे सामने है, और इसके लिए जो श्रद्धा, लगन और मेहनत की गई, जिन हमारी दादियों ने यहां पर मेहनत की, उसके लिए वो भी बधाई की पात्र है। हमारी ये संस्था समाज को एक नया जीवन दे रही है, एक नया दर्शन दे रही है, एक अच्छी सोच दे रही है, इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। हमें अपने आप को खुश नसीब समझना चाहिए कि हम एक ऐसे देश में पैदा हुए जिसको भारतवर्ष भारत माता कहा जाता है। यहां पर जो समूह दिखाई दे रहा है, हमारे देश की एक विशालता है। यहां पर सैकड़ों भाषाएं हैं, अलग अलग तरह की ऋतुएं हैं, अलग अलग तरह का पहरावा है। यहां पर मरुस्थल भी हैं, यहां पर पहाड़ भी हैं, यहां पर बर्फ भी है, सूखा भी है। इस देश की यही पहचान है, और उस पहचान के बीच में अलग भाषा, अलग भेष, फिर भी अपना एक देश, यह हमारे देश की महानता है। मैं कश्मीर से आया हूं। हम सब ये मानते हैं, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि जो कार्य प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है, वो अपने आप में एक सराहनीय कार्य है। समाज के बदलते हुए मूल्यों को, समाज के बदलते हुए सिद्धांतों को, समाज के बदलते हुए जो हमारे संस्कार हैं, उसमें एक बहुत बड़ी दिशा राजयोग द्वारा दी जा सकती है। सुबह मुझे यहां के एक सेशन में बैठने का मौका मिला, और निश्चय ही मन को ऐसी अनुभूति होती है, हमारा आधार शांति है, ओम है, उसी को लेकर के आगे चल रहे हैं। लेकिन मेरा यह मानना है, साधना ही मुक्ति का शुभ द्वार है, शक्ति ही तो शांति का आधार है। हमारे बीच में शक्ति भी होनी चाहिए, चहुमुखी विकास होना चाहिए हमारा, मन, शरीर, आत्मा, बुद्धि, सभी तरह का विकास होना चाहिए। अगर हम अपने आप में परिपूर्ण हैं तो दूसरा कोई हमारी तरफ देखेगा नहीं। मुझे गांधी जी के लिए मेरा पूरा सम्मान है, लेकिन इस देश ने कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा को भूला, अपने संस्कारों को भूला, अपनी सभ्यता को भूला, अपनी संस्कृति को भूला। उसी का परिणाम है कि आम बार बार ये कहते हैं कि हम हजार साल गुलाम रहे। कहीं ना कहीं हमें कमियां रही होंगी, हमारा देश वहां के राजे गुलाम रहे होंगे, लेकिन हमारा यहां की जनता कभी गुलाम नहीं हुई। यही हमारी श्रेष्ठता है। शंकराचार्य ने जो मठ बनाए थे चार दिशाओं में बनाए, ये जानते हुए कि भारत एक रहे। गुरु गोविंद सिंह जी ने जब खालसा का सृजन किया तो हर हिंदुस्तान के इलाके से अलग अलग जो पांच प्यारे बनाए थे उनको लिया। उसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच थी कि राष्ट्र ये इकट्ठा रहे, और इसी सभी को देखते हुए आज इस प्रकार की सोच बनाने की जरूरत है। हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, हम में कुछ जरूर कमियां रही होंगी जिसके कारण से, लेकिन उन कमियों को कहीं ना कहीं दूर करने की जरूरत है। अध्यात्म हमारा जो बेस है, साधना जो हमारा बेस है, उस बेस को हम भूल ना जाएं, इस बात के लिए हमें सोचना होगा। आज इस देश में सिकंदर महान कहा जाता है, आज इस देश में अकबर महान कहा जाता है, लेकिन पोरस और जो अकबर के खिलाफ लड़ते रहे हमारे राजस्थान के योद्धा, उनका कहीं हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हमारी किताबों को भी कहीं बदलने की जरूरत है। शिवाजी को पहाड़ी चूहा, महाराणा प्रताप को डाकू, और गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने अपने पिता को और पुत्रों को वारा, उनको कहीं लुटेरा नाम दिया गया। इस प्रकार की जो शक्तियां हैं उनको कहीं ना कहीं लगाम लगाने की जरूरत है। आज युवा हमारे देश की 65% संख्या है, युवाओं को एक नया आदेश मिले, निर्देश मिले, उसके लिए जो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी द्वारा कार्य किया जा रहा है वो सराहनीय है। मुझे लगता है कि आने वाला वक्त, जो हमारे हिंदुस्तान की एक परंपरा थी, हमारी जो संस्कार थे, उस संस्कारों को फिर घर घर में लाने की जरूरत है। आदरणीय दादा लेखराज जी ने एक बहुत बड़ा कार्य किया है, आज जो हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं ये उनकी सोच उस वक्त की थी कि हमारी बहनों को, हमारी जो महिलाओं को आगे लेकर के जाना। आज पूरे दुनिया में एक सोच बदली है, भारत के प्रति एक सम्मान बढ़ा है। भारत फिर से विश्वगुरु बने, भारत फिर से सोने की चिड़िया बने, उसके लिए अपने संस्कारों की जरूरत है, संस्कारों को जगाने की जरूरत है। इसलिए हमारी माताओं का, हमारे जो टीचर्स हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में, उनको एक बहुत बड़ा रोल अदा करना होगा। इसलिए मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हुआ, आओ इस समाज को आगे बढ़ाने में जो ब्रह्म कुमारी द्वारा एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, इसको और आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। और आज से ही ये सोच करके, ये जो 80 वर्ष के बाद हमने यहां पर सम्मेलन किया है, इसमें एक सोच बना करके लेके जाएं इस देश को, इस राष्ट्र को, समाज को आगे बढ़ाने के लिए। अपने से जो भी हो पाएगा उसको करने में हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
दिल से धन्यवाद भ्राता कविंदर गुप्ता जी, स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू एंड कश्मीर। बहुत ही सुंदर विचार, भारत के ऊंचे ओहदों पर विराजमान इन महान विभूतियों के जब ऐसे विचार सुनते हैं तो मन बड़ा ही प्रसन्न होता है कि भारत का सचमुच जो भविष्य है वो बहुत श्रेष्ठ है, वो इतने ज्ञानवान है। भाई बहनों, ज्ञान और मेहंदी की फितरत एक जैसी होती है, जब तक हाथ पे ना लगे तो रंग नहीं चढ़ता है। ज्ञान कर्म में उतरे तो नूर है, वरना तो मंजिल कोसों दूर है। और आज हमें इस सारे ज्ञान को, आध्यात्मिक ज्ञान को, जो भारत में सदा मशाल जलती रही है, उसे अपने कर्मों में लाने की जरूरत है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने माननीय मेहमान डॉक्टर वी के सारस्वत जी को, फाउंडर डायरेक्टर जनरल DRDO एंड चीफ साइंटिफिक एडवाइजर टू द इंडियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। आप पधारें, आपका हृदय से स्वागत करते हैं हम, आपके विचार सुनने के अभिलाषी हैं, स्वागत है।
Namaskar, His Excellency the Governor of Gujarat and Madhya Pradesh, Shri Kohli ji, most respected Dadi Janki ji, esteemed guests on the dais, off the dais, all the participants from different parts of this country who have gathered here to celebrate the 80th anniversary of this great institution, Prajapita Brahma Kumaris Ishwari Vishwavidyalaya. I have been in touch, rather involved, with this institution for almost now 7 to 8 years. I was introduced to this institution by none other than our great scientist, philosopher, and former president, Dr. Abdul Kalam, who visited this institution and started the ball rolling for linking science, spirituality. And we had some very good projects carried out here to understand the impact of spirituality on the human behavior, even the physiological changes like cardiovascular diseases and so on. This tradition continued when I took over as Director General of DRDO, and it continues even today, all because of the blessings of most respected Dadiji. When I came here, I thought I would be talking and giving you a long talk, because as a scientist I have habits of analyzing things to minor and minute details. But then, knowing that the time is less, I'm going to reduce it to only one part of my talk. I wanted to talk to you about spirituality, its influence on decision making, and spirituality, how it helps to maintain sustainability, which is the need of the hour today. Taking clue from the story which was given by His Highness Shri Bhikkhu Sangh Senaji, and later on the thoughts which were given by Shri Shailesh Kumar, the group editor of PTC News, combining that, so I thought I'll talk to you about sustainability and spirituality as how it can be done. Most of you know what is spirituality and what is sustainability. I will not go into those details today. But sustainability, as you know, is the process of meeting the needs of the present generation without affecting the living requirements of the future generations. It also embodies what we call as economic development. It includes social equity. It includes environmental protection. Economic, social, and environmental concerns are all embodied together. For centuries, these three things have remained in an isolated mode, and that's why there has been a major issue. And the story which our His Highness mentioned about the God coming and living inside, and we are trying to search for it, it certainly is replicated by the fact that God created only the biological or the natural world, whereas man has created an artificial world by misusing the technologies and the technological advances. The rate at which the biological or the natural world evolves or moves into its new configuration is much slower as compared to the growth of the artificial world. Evidently, the differential rate of growth, matlab un dono ki jo aage badhne ki rate hai, kshamtaye hai, wo alag alag hai, par ek dusre ke andar hai. As we say, that the biological world and artificial world, they are embedded one inside the other. And because of that, there is a great strain on the biological world and the artificial world. And this is called today's knowledge as ecological dilemma of the present age. Natural world, by the God's grace, has a capability to organize itself through its ecological and other kinds of micro and macro relationships. Because we have ocean, we have earth, we have space, we have, and also the human beings which God has created. Whereas the artificial world has its own in hyperspace, what we call today as society, science, technology, and economy as dimensions. We do not know how these worlds communicate to each other, and that's why artificial world has problems. And those problems, what everybody has been talking since morning today, what Mr. Shailesh also mentioned, and I think just a few minutes ago, people talked of the discontent. Human environments are becoming more and more turbulent. Societies are becoming fragile and fractured, leading to ever-increasing conflicts. Small perturbations at any point in the globe are causing great global problems. Society has become generally consumerist and causing tremendous pressure on natural resources. I think Shailendraji talked about oil vanishing, coal vanishing and all that, and its impact on what is going to happen in terms of future wars. Because of this, we have landed ourselves in a very scary situation in our quest and relentless pursuit of happiness. And that happiness is not what this group is talking about. That happiness, as everybody is talking about, is materialistic. So how to establish this communication between the biological world and the artificial world? The only common factor there is the man. And if the man uses the language, what language it should use to establish that communication? Here comes the role of consciousness and the level of consciousness in himself and the rest of the nature. And that's why the idea of the world spirit may have a consequence here. And that is what Parampita Brahmadasa has said. And that spirit of world is creativity and harmonious unity. And that is what we are doing as part of this mission, what we are seeing here today. In that respect, a spiritual person can play an important role in establishing this communication between these two worlds. And how he can do it? By doing it, what we call as for sustainable growth, following what is the dharmic behavior. What in the Indian philosophical domain we call it approach of action to life. Dharma is law, duty, and that keeps the system together always. Since we have to follow this, then all of us who are engineers, scientists, builders, they have to follow what is called the Shastra method, the dharmic method or the Shastra method, which was the old Indian concept, in which there are three perspectives, the spiritual perspective, the ethical or the dharmic perspective, and your own professional perspective. And this means your love for beauty of the nature that has to be embodied in all your actions. And that's why our old saying is there, that if you follow Shanti, Satyam, Dharma, Ahimsa and Prema, these are the five tattvas which are responsible to achieve peace and preserve the coupling, recognizing the existence of the coupling, the ethical and moral activity without hurting neither living or non-living nature, and with love towards both, and cooperate in the natural evolution of the biosphere. This is what is needed today, and through the thoughts of spirituality one can follow this. And that's where what I see in our Brahma Kumars and Kumaris, Mansa Vacha Karma, which is what is important part, which will bring through your thoughts, action and the execution a total harmony. If that happens, sustainability will preserve. I will end this my talk, because of paucity of time, only on one note, which is what Swami Vivekananda said. And all of you are looking at it today, and everybody has been talking about it. He said, he was trying to enthuse the youth of this nation, and he said, all divinity is within you. Try to get your divinity to work for the benefit of others. He said, all who live for themselves are more dead than alive. Live for others. So friends, let's all live for the welfare of this great nation. Let us all live for the welfare of the human beings on this earth, and make this globe happy, peaceful and prosperous. Thank you. Namaskar.
बहुत बहुत हृदय से शुक्रिया डॉक्टर वी के सारस्वत जी, आपके इतने सुंदर और गहरे विचारों के लिए, और लास्ट में तो इतना प्यारा संदेश दिया कि हम कार्य करें सबके लिए, और भारत के एक बड़े महान अद्भुत व्यक्तित्व को याद किया कलाम जी। भाई बहनों, मानव जीवन बड़ा अद्भुत होता है, लेकिन इसमें यदि एक अद्भुत लक्ष्य को जोड़ दिया जाए तो ये जीवन कितने कमाल का हो सकता है वो आप और हम समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर और गहरे विचारों के लिए। हम बहुत ही
प्रसन्न हुए, कृतज्ञ हुए। अब हमारे बीच हैं आदरणीय राजयोगिनी चंद्रिका दीदी जी, जो कि वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं, अहमदाबाद से हमारे बीच पधारी हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर यूथ विंग। आइए उनके साथ थोड़े मन के विचारों को और ऊर्जा से भरते हैं राजयोग के द्वारा। बड़ी सुंदर विधि है राजयोग, बस आप अपने मन को थोड़ी सी दिशा देकर विचारों को उस सागर के साथ जोड़ देते हैं और सब कुछ जो अनुभूतियां करना चाहते हैं वो पा जाते हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे कि हमें कुछ क्षणों के लिए राजयोग की अनुभूति कराएं। तो आइए उस अमृत के सागर को अपने में भरते हैं, राजयोग से उस सागर में उतरते हैं, उस आनंद में उतरते हैं। आदरणीय चंद्रिका दीदी जी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मुझे बहुत खुशी है इस 80 साल के उत्सव की, और एक बात मुझे बड़ी स्पष्टता के साथ आपको कहने का ख्याल आ रहा है और उस बात को बड़े महत्व से आप ध्यान में रखेंगे, और वो बात मैं कहने जा रही हूं। हमारे महामहिम राज्यपाल श्री ओपी कहली जी गुजरात राज्य और हम सबके बीच दादी जानकी जी उपस्थिति है, उनका औरा हमारे साथ है। मित्रों सभी अपनी वक्तव्य में कह रहे हैं ब्रह्मा कुमारी बहनों की महिमा कर रहे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की महिमा कर रहे हैं। उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, सभी वक्ताओं का, और आप सभी भाई बहनों का। लेकिन वृक्ष के फाउंडेशन में जो जड़ होती है वो देखने भी नहीं आती है। इस इतने बड़े कार्य को करने और कराने वाले वो तो है सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु, जिसे कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। चलिए आज मुझे भाग्य मिला है, मैं आप सबको एक अनंत यात्रा की ओर ले चलने चाहती हूं, जिस यात्रा को आप जीवन में कभी भूल नहीं पाएंगे, और जो यात्रा आपके जीवन के लिए परम आनंद, परम शांति, परम सुख और सर्व शक्तियों का स्रोत बनकर रहेगा। आप थोड़े रिलैक्स होकर के बैठ जाइए, और आपका जो लेफ्ट हैंड है ना उसकी हथेली जरा ऐसे कीजिए, और आपका जो राइट हैंड है ना उसकी बीच की अंगुली जरा हथेली के बीच में लगाइए, और उसमें से वाइब्रेशन को लीजिए। ये हाथों में जबरदस्त वाइब्रेशन है जो आशीर्वाद के रूप में देते हैं, आप जरा वाइब्रेशन ले लीजिए, और अपने मस्तक में तिलक कीजिए। अब आप महसूस करिए कि आप यहां बैठे हैं, आप कुर्सी पर नहीं बैठे हैं, आप सोफे पर नहीं बैठे हैं, आप एक महान आत्मा हो। हम सभी अपने लिए संसार में सबसे बड़ी हस्ती हो खुद ही हैं और वो हम आत्मा हैं। हम चलते हैं अनंत की यात्रा की ओर। इस शरीर की जरूरत नहीं है वहां, छोड़ दो इसे यहां। अब इस स्थूल शरीर में से थोड़ा ऊपर उठते हैं, इस साकार जगत के चांद तारों से पार चलते हैं। सूर्य का प्रकाश जहां पहुंच नहीं सकता है, ऐसा दूर सुदूर हमारा प्रयाण आरंभ हो चुका है। ऊर्जा से भरपूर सूक्ष्म आकारी स्वरूप को धारण कर हम वहां चलते हैं जहां वो निराकार ज्योति बिंदु सर्वशक्तिवान पिता विराजमान है। आकारी जगत से भी परे ये परम शांति का धाम है। ये पूर्ण पवित्र ज्योति से भरपूर है। मैं ज्योति, परम ज्योति के समीप बिल्कुल समीप आ पहुंची हूं। ओ मेरे प्यारे पिता, प्यारे बाबा, कल्याणकारी पिता, आपके बुलावे पर मैं आपके सम्मुख मैं आत्मा आप ही की संतान पिता का संदेश है, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए तो धरणी पर आया हूं। अपने को आत्मा समझो, मुझ परम पिता परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ो।
और
जन्म जन्मांतर के लिए सुख शांति पवित्रता का अमूल्य वर्षा प्राप्त करो। जीवन में दो चीज का महत्व है, मिलन और मिलन की स्मृति। आप सब यहां अपने घर में आए हैं, अपने परमपिता परमात्मा के घर में आए हैं। परमात्मा की अव्यक्त सूक्ष्म शक्तियों को आप अनुभव कर रहे हैं। दिल से मेरे साथ बोलो, मेरे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मैं आत्मा आपकी संतान। प्यारे बाबा, मेरे बाबा, मीठे बाबा, मैं आपकी संतान हूं। बस ये मिलन को याद रखना, प्रभु मिलन का सुख जीवन में सदा अनुभव करते रहना। और आप सब जहां से आए हैं, भगवान ने आपको यहां लाने के लिए जिनों को डिवाइन मैसेंजर्स बनाया है, उन्हों का हाथ पकड़ के जहां जहां केंद्र है जाकर के भगवान का वर्षा प्राप्त कीजिए, यही अभ्यर्थना। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय चंद्रिका दीदी जी, इस मधुर इस स्नेहमयी अनुभूति के लिए, उस दिव्य लोक की यात्रा के लिए, उस दिव्य ज्योति से मिलाने के लिए। दोस्तों, कभी कभी एक पल जो है वो बरसात की उस बूंद की तरह आता है जो भिगोकर चला जाता है प्यार में, उस ईश्वर के प्यार में, और उस एक बूंद में उसका सारा प्यार समाया होता है। और ये एक वो पल होता है जिसने सदियों इंतजार कराया होता है। आप राजयोग के माध्यम से जैसी चाहे सुखद अनुभूतियां पा सकते हैं। बड़ी प्यारी ये विद्या है जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय द्वारा सिखाई जाती है। आइए चलते हैं एक नृत्य की ओर। आध्यात्मिक जीवन में सदा ही नृत्य है, और कभी सोचा ना था भगवान मिलेगा, इस नृत्य को लेकर आ रहे हैं श्री रंगम भरत नाट्यशाला त्रिची के हमारी बहने जो कलाकार हैं, और आदरणीय भ्राता निर्वैर जी हमारे बीच पधारे हैं। हम करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं। आपके आने से यहाँ का वातावरण और खिल उठा है। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है आदरणीय भ्राता जी। गुजरात के महामहिम राज्यपाल भ्राता ओम प्रकाश कोहली जी का हृदय से स्वागत करते हो। ये नयन मुलाकात, ये मुस्कान, स्वागत है। दो महान विभूतियां आपस में मिल रही हैं प्रभु की छत्र छाया में, दादी जी की छत्र छाया में हम पर है। बड़े आनंद की बेला है हमारे बीच इस कार्यक्रम में। एक के बाद एक और महान विभूतियां, महान दिव्य आत्माएं पधार रही हैं। बड़ा ही आनंद है। आइए नृत्य करती बेला में इस नृत्य की ओर चलते हैं। मैं स्वागत करता हूं अपनी दिव्य बहनों का।
कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। उजड़े जहाँ चमन में फिर से फूल खिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता, हम संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता, तरसते नैन जिसको वो रोज दिखेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तू चिंता मत कर मैं हूं ना कह दिया है, हाँ जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तू चिंता मत कर मैं हूं ना कह दिया है, हो ज्योति बिंदु शिव मुझे साकार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इन देवी बहनों को इस सुंदर दिव्य नृत्य के लिए। त्रिची से हमारे बीच पधारी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इनके गुरुजनों को भी हमारा बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम। बीजी जी से, गवर्नर जी के हाथों से, महामहिम के हाथों से पुष्प गुच्छों को प्राप्त करते हुए सदा खिली रहे भारत की ये मातृशक्ति, सदा प्रेम शांति और नृत्य का संगीत इनके जीवन में भरा रहे, सदा आध्यात्मिक भावों से ये भरी रहे। उनकी जो टीचर हैं वो भी साथ हैं, उनकी नृत्य की शिक्षिका हर्षोल्लास की इस वेला में, उत्साह की इस वेला में, उत्सव की इस वेला में, सेलिब्रेशन की इस वेला में हमारे लिए अति खुशी की, गर्व की बात है कि हमारे बीच एक ऐसे महान शख्स उपस्थित हैं जिनका प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में बड़ा ऊंचा स्थान है, बड़ा मान है। ब्रह्मा से वो मनस्वी हैं, विष्णु से यशस्वी हैं, और श्री शंकर से वो
तपस्वी हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के सचिव जनरल अति प्रिय आदरणीय भ्राता निर्वैर जी, हम करतल ध्वनि से आपका अभिनंदन करते हैं और आज इन पावन पलों में आपसे शुभ आशीष के अभिलाषी हैं कि आप कुछ कहें। हमारे भ्राता निर्वैर जी बड़े प्रेम और सद्भावना के भावों से भरे हैं, सोने से भी ज्यादा खरे हैं। जितनी तारीफ की जाए इस दिव्य मंच पर परमपिता परमात्मा की छत्र छाया में कम है। बहुत बड़े इस कार्य को दादी जी के साथ मिलकर सुचारू रूप से आप चलाते हैं, आपका अभिनंदन है। हम करतल ध्वनि से निर्वैर भाई जी से सुनने की।
ओम शांति। परमादरणीय महामहिम श्री ओपी कोहली जी, गवर्नर ऑफ गुजरात, और मंच पर आसीन सभी विशेष आत्माएं, आदरणीय बहनें और भाई, सभा में उपस्थित आप सभी गणमान्य बहनों और भाइयों, आज यह जो विशेष कार्यक्रम 80th एनिवर्सरी ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, इसका तीसरा दिन है और सबसे हर्ष की बात है कि इस कार्यक्रम में चार चांद लगाने के लिए स्वयं हमारे आदरणीय गुजरात के गवर्नर साहब भ्राता ओपी कोहली जी स्वयं यहां पधारे हैं। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। आपका अभिनंदन करता हूं और आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। आज से नहीं, क्योंकि आप इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के कई प्रोग्राम्स में आ चुके हैं और आपको सुनने का भी मौका मिला है। आपस में बैठ ईश्वरी ज्ञान की लेन देन भी होती है। आपका व्यक्तित्व बहुरूपी है। हर वर्ग के भाई बहनों को आप बहुत उमंग और उत्साह दिलाते हैं, क्योंकि कई प्रोग्राम इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के कनेक्शन के होते हैं, कई प्रोग्राम अन्य संस्थाओं के भी होते हैं, उसमें भी आप शिरकत करते हैं। और हमें इस बात की खुशी है कि आज का ये कार्यक्रम उसमें आप पधारे हैं। सब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के भाई बहनों को इस बात का बहुत बहुत हर्ष है और आपका अभिनंदन करते हुए यही कहेंगे कि इस बार जो ये विशेष प्रोग्राम रखा गया है, ये 80 साल पूरे हुए हैं इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के ईश्वरी सेवाओं के। लेकिन आप जानते हैं, कोई भी संस्था एकदम से विश्वव्यापी नहीं बनती है। 80 साल पहले इसकी नींव पड़ी पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा और उन्होंने एक नई शुरुआत की। कि जो कार्य कहा जाता है अगर आप एक पुरुष को परिवर्तित करो तो वो एक परिवर्तित होगा, लेकिन अगर एक महिला को परिवर्तित करो तो क्या क्या परिवर्तित होगा, परिवार भी परिवर्तित होगा, समाज भी परिवर्तित होगा, देश भी परिवर्तित होगा और सारा विश्व भी परिवर्तित होगा। ऐसी उच्च दृष्टि से उन्होंने निमित्त बनाया ब्रह्मा कुमारी सरस्वती, जो शुरू में उनको मातेश्वरी सरस्वती कहते थे, उनको निमित्त बनाया इस इंस्टीट्यूशन के संचालन के लिए, और उनके साथ में जिनको आज हम दादी के नाम से विशेष याद करते हैं, दादी प्रकाशमणि, जो अभी नहीं है लेकिन सभी जानते हैं उनको, दीदी मनमोहिनी, अन्य दादियां भी, उन्होंने भी अपना बहुत योगदान दिया, और वर्तमान समय हमारी प्यारी प्यारी जानकी दादी जी जो 101 वर्ष की हुई हैं और उन्होंने आजीवन अपना इस सेवाओं में दिया है, तो हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि बहनों के और भाइयों के दोनों के स्नेह और सहयोग से जो परमात्मा पिता का कार्य इस विश्व परिवर्तन के लिए शुरू हुआ, आज उसका संदेश 130 से भी ज्यादा देशों तक पहुंच गया है, और आप सब भाई बहने जो इस कार्यक्रम में पधारे हैं, मैं समझता हूं हर एक यहां आने के बाद, यहां के प्रकंपन उसका अनुभव करने के बाद, ईश्वरी परिवार का दिव्य स्नेह उसका अच्छी तरह से अनुभव करने के बाद फील करते होंगे कि अगर सारा विश्व इसी तरह से ऐसी उच्च दृष्टि से एक दो को देखने लगे, आत्मिक भाव से एक दो से डील करने लगे, तो विश्व क्या बन जाएगा, भारत क्या बन जाएगा, फिर से भारत स्वर्ग बन जाएगा, देवभूमि बन जाएगा, और उसके साथ में सारे विश्व में शांति हो जाएगी। तो आज इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हमारे आदरणीय भ्राता ओपी कोहली जी, खास हमारे लिए इस कार्यक्रम के लिए आप गांधीनगर से यहाँ पधारे हैं, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, और यही इच्छा है कि आप ऐसे ही हमें आकर के गौरवान्वित करते रहें। इसी भावना के साथ पुनः सर्व भाई बहनों का और गवर्नर साहब का बहुत 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 आदर पूर्वक अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है।
हृदय के गहरे भावों से शुक्रिया अति प्रिय भ्राता निर्वैर जी, आपने शुभकामनाएं भी दी राज के हमारे मुख्य मेहमान महामहिम राज्यपाल भ्राता ओपी कोहली जी का आपने बड़े दिल से स्वागत किया, अभिनंदन किया, और आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय इतना प्रसन्न है, ये हॉल प्रसन्न है, यहाँ की उपस्थित सूक्ष्म शक्तियां प्रसन्न है, हमारे ब्रह्मा बाबा प्रसन्न है, हम सब प्रसन्न हैं कि आप आज यहाँ उपस्थित हैं। महामहिम ओम प्रकाश कोहली जी, पूर्व सदस्य राज्यसभा जो कि 94 से 2000 रहे, बीजेपी के आप वरिष्ठ नेता हैं, 1999 से 2000 तक आप बीजेपी के दिल्ली क्षेत्र के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, अनुभवी जीवन है, पावन व्यक्तित्व है, और शुभकामनाओं के आप बेहद धनी है, और जीवन का एक बड़ा हिस्सा आपने शिक्षक के रूप में बिताया है, और अनेकों पुस्तकों के आप रचयिता हैं, लेखक हैं, सुरक्षा, शिक्षा और चेतना, इन तीनों विषयों पर आप बहुत ही गुवे हैं। निर्भय भाई जी ने आपके व्यक्तित्व की बात कही, मैं आपके व्यक्तित्व में बस एक ये शेर कहना चाहूंगा
कि वो व्यक्तित्व बोलता है, इनका कर्म बोलता है, इनका चित्र बोलता है, इनका व्यक्तित्व बोलता है, कर्म बोलता है, चित्र बोलता है, जब ये मूक भी हो तो इनका चरित्र बोलता है। सबसे सशक्त वही शख्सियत होती है जो अपने चरित्र से बोलते हैं, ऐसे गुजरात के महामहिम भ्राता ओम प्रकाश कोहली जी गवर्नर हमारे बीच हैं। हम उनसे नम्र निवेदन करते हैं कि आज वो मूक नहीं रहे, बल्कि अपने चिंतन से, अपनी प्रज्ञा से, अपनी शुभकामनाएं, अपनी आशीष हमारे बीच रखें। हम स्वागत करते हैं करतल ध्वनि से।
मंच पर विराजमान राजयोगिनी सरला दीदी जी, आदरणीय दीदी रानी बहन, श्री कविंद्र गुप्ता जी स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू कश्मीर, डॉक्टर वीके सारस्वत जी, आदरणीय राजयोगी निवैर भाई जी, इनके अतिरिक्त मंच पर विराजमान अन्य महानुभावगण, भाइयों बहनों और इस सभागार में उपस्थित आप सभी भक्तजन प्रेमी जन, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का यह 80वां वार्षिकोत्सव है। इस उपलक्ष्य में हम सब लोग यहां इकट्ठे हुए हैं। ब्रह्मा कुमारीज मूवमेंट एक अंतर्राष्ट्रीय मूवमेंट है, इंटरनेशनल मूवमेंट है, वर्ल्ड मूवमेंट है, और इस मूवमेंट का कोई उद्देश्य होना चाहिए। इस मूवमेंट का उद्देश्य है अपने को बदलना और समाज को बदलना। हम अपने को बदलेंगे तो समाज को बदलेंगे। देश को आजाद हुए 70 वर्ष हो गए हैं। आजादी की लड़ाई का आंदोलन चला था, उसका उद्देश्य था देश को आजाद करवाना, ब्रिटिश सत्ता से राज सत्ता भारतवासियों के हाथ में आना। वह फेज, वह चरण पूरा हो गया, देश आजाद हो गया, राज सत्ता अंग्रेजों के हाथ से भारतवासियों के हाथ में आ गई। लेकिन इतना होना ही क्या पर्याप्त था, या आवश्यकता ये थी कि स्वतंत्र भारत, आजाद भारत का समाज बेहतर बने, आध्यात्मिक बने, धार्मिक बने, सांस्कृतिक बने, रिलीजियस और कल्चरल बने, स्पिरिचुअल बने। समाज परिवर्तन का ये फेज आजादी के आंदोलन के बाद शुरू होना चाहिए था, लेकिन हम देखते हैं कि देश की आजादी के 70 वर्ष बीत जाने पर भी जिसको हम सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का आंदोलन कहते हैं, वह इतना मजबूत आंदोलन इस देश में खड़ा नहीं हुआ जितना मजबूत आंदोलन खड़ा होना चाहिए था। इसका परिणाम है कि आज हम अनेक प्रकार की विकृतियां अपने चारों ओर देखते हैं। हम देखते हैं कि समाज में उपभोगवाद, कंज्यूमरिज्म की प्रवृत्ति जोरों पर है। हम देखते हैं कि भौतिकतावाद मैटीरियलिज्म की प्रवृत्ति जोरों पर है। हम समाज में भ्रष्टाचार देखते हैं, हम समाज में हिंसा देखते हैं, हम समाज में संघर्ष देखते हैं, हम देखते हैं समाज में खिंचाव है। तो प्रश्न पैदा होता है कि क्या आजादी प्राप्त करना यही अंतिम उद्देश्य था, या आजाद भारत के समाज को बदलना ये भी जरूरी था। और अगर आजाद भारत के समाज को बदलना जरूरी था तो हम देखते हैं कि वह सामाजिक बदलाव का आंदोलन अभी भी जरूरी है, उसकी अभी भी आवश्यकता है। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आंदोलन वास्तव में सामाजिक बदलाव का आंदोलन है। दिस इज ए मूवमेंट फॉर सोशल चेंज। ये समाज को बदलने वाला मूवमेंट है, समाज को बदलने वाला आंदोलन है। राजनीतिक आंदोलन चलाना आसान होता है, लेकिन समाज को बदलने वाला आंदोलन चलाना बड़ा मुश्किल होता है। और यह ब्रह्मा कुमारी आंदोलन सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है, समाज को बदलने वाला आंदोलन है। इस परिवर्तन के आंदोलन की आधार भूमि है अध्यात्मवाद, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिज्म। भारत एक आध्यात्मिक देश रहा है, आध्यात्मिक देश है। हम ये मानते हैं कि एक परम सत्ता है और शेष जो कुछ है वह उस परम सत्ता की ही अभिव्यक्ति है, उस परम सत्ता का ही प्रकाश है। उस परम सत्ता को प्राप्त करना, उसके द्वारा अपने जीवन को रूपांतरित करना, उसके द्वारा दूसरों के जीवन को रूपांतरित करना, यह भारत की मान्यता रही है, भारत की विचारधारा रही है। विश्व परिवर्तन के लिए आत्म परिवर्तन जरूरी है, और आत्म परिवर्तन के लिए यह विश्वास, यह धारणा जरूरी है कि मैं परमपिता का अंश हूं, मैं ही परमपिता हूं, परमपिता ही मुझ में अभिव्यक्त होता है, वही मुझ में झलकता है। विश्व परिवर्तन के लिए यह जो परमात्म ज्ञान है, यह जो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास है, यह जो ईश्वरीय सत्ता में आस्था है, यह विश्व परिवर्तन के लिए बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। और आध्यात्मिक देश भारत की यह मान्यता रही है। जिनको हम मूल्य कहते हैं, जिनको हम वैल्यूज कहते हैं, वे सब वैल्यूज इसी आध्यात्मिकता पर आधारित हैं। आखिर को मूल्य या वैल्यू होता क्या है? मूल्य या वैल्यू वह दृष्टिकोण है जो हमें बताता है कि क्या चीज मूल्यवान है और क्या चीज मूल्यवान नहीं है। हर मनुष्य के सामने दो में से एक को चुनने का अवसर आता है, इसको चुनूं कि इसको चुनूं। तो उस समय उसको जो मूल्य दृष्टि प्राप्त है वह उसकी मदद करती है, उसको बताती है कि यह मूल्यवान है इसको चुनो, यह मूल्यवान नहीं है इसको मत चुनो। ये जो मूल्य की दृष्टि है, इसका एक उदाहरण देखें अगर हम, तो तुलसीदास के रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है। वह प्रसंग आता है कि इन दो में से किसको चुना जाए। एक तो है प्राण, प्राण मूल्यवान होते हैं इसमें कोई संदेह नहीं, हम में से हर व्यक्ति अपने प्राणों को बचा के रखना चाहता है, प्राणों की सुरक्षा चाहता है। धन से भी अधिक मूल्यवान प्राण होते हैं, प्राण को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है, लेकिन तुलसीदास के रामचरितमानस का वह जो प्रसंग है, उस प्रसंग में रघुवंशियों के सामने एक द्वंद्व खड़ा हो गया। और वो द्वंद्व था कि वचन का पालन करें कि प्राण को बचाएं, प्राण ज्यादा मूल्यवान है कि वचन ज्यादा मूल्यवान है। अब अगर रघुवंशियों को ये दृष्टि मिली होती कि प्राण ज्यादा मूल्यवान है, वचन भंग होता है तो हो, तो रघुवंशी वचन का पालन ना करते। लेकिन रघुवंशियों को क्या दृष्टिकोण दिया गया था, उन्हें क्या शिक्षा दी गई थी? उनको कहा गया था, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। प्राण जाते हैं तो जाएं, पर वचन नहीं जाना चाहिए। प्राण और वचन में से वचन ज्यादा मूल्यवान है, यह दृष्टि रघुवंशियों को दी गई थी। परिणामतः उन्होंने वचन का पालन किया, प्राण से अधिक वचन को महत्व दिया। ये जो मूल्य दृष्टिकोण है, इस मूल्य दृष्टिकोण के बिना समाज संवरता नहीं, समाज बेहतर बनता नहीं। इसलिए अगर हमको सामाजिक परिवर्तन करना है, अगर हमको समाज को बेहतर बनाना है, तो ये आवश्यक है कि हम समाज में, युवा शक्ति में, लोगों में मूल्य दृष्टि लाने का प्रयत्न करें। भारतीय संस्कृति की दो विशेषताएं हैं। भारतीय संस्कृति की एक विशेषता तो यह है कि भारतीय संस्कृति स्पिरिचुअलिटी पर, आध्यात्मिकता पर बल देती है। यह आध्यात्मिक संस्कृति है, यह स्पिरिचुअल संस्कृति है। दूसरी विशेषता यह है कि यह यूनिवर्सल है, यह वसुधैव कुटुम्बकम को स्वीकार करती है, यह सबको स्वीकार करके चलती है, यह किसी एक देश की, किसी एक समाज की नहीं। तो स्पिरिचुअलिटी और यूनिवर्सैलिटी, ये दो भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं। और हमको समाज परिवर्तन का आंदोलन अगर खड़ा करना है, तो समाज परिवर्तन के आंदोलन के लिए हमको भारतीय संस्कृति को ही आधार बनाना होगा। और भारतीय संस्कृति को आधार बनाने का अर्थ है कि हमको स्पिरिचुअलिटी को और यूनिवर्सैलिटी को, आध्यात्मिकता को और सार्वभौमिकता को, इन दोनों को आधार बनाकर एक नए समाज के निर्माण का कार्य करना होगा। और इसी नए समाज के निर्माण के कार्य में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आंदोलन सक्रिय है पिछले 80 वर्षों से। यह आंदोलन समाज परिवर्तन का आंदोलन है। समाज परिवर्तन के आंदोलन के लिए ये जरूरी है कि दृष्टिकोण रचनात्मक होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। और कंस्ट्रक्टिव आंदोलन, जो भी रचनात्मक कार्यक्रम है, उनको हाथ में लेकर ही हो सकता है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आंदोलन एक रचनात्मक आंदोलन है, जो कैसे विषयों को अपने हाथ में लेकर चलता है। महिला सशक्तिकरण का विषय, समाज की आधी आबादी महिला आबादी है, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, बेटियां हैं, वे पिछड़ी रहेंगी तो समाज ताकतवर कैसे बनेगा। उनमें आत्मविश्वास जगाने की आवश्यकता है, उनमें आत्मगौरव जगाने की आवश्यकता है, उनको योग्य सम्मान देने की जरूरत है, उनको उचित गौरव देने की जरूरत है। इसके लिए महिला सशक्तिकरण के आंदोलन की जरूरत है। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आंदोलन जिन विषयों को हाथ में लेकर चल रहा है, उनमें महिला सशक्तिकरण का भी एक आंदोलन है। रचनात्मक आंदोलन का ही एक और प्रकार है वो है स्वच्छता आंदोलन। हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता को एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप दिया है और उन्होंने कहा है कि 2019 तक यह आंदोलन पूरा होना चाहिए। इसके लिए एक बड़े जन आंदोलन की जरूरत है। मुझे इस बात की खुशी है कि प्रजापिता ब्रह्मकुमारी आंदोलन अपने को स्वच्छता के प्रति भी समर्पित करके चलता है और स्वच्छता आंदोलन को भी आगे बढ़ाने में उसकी भूमिका है। इसी प्रकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी महिलाओं के सशक्तिकरण का आंदोलन है, अपनी बहनों और बेटियों को गौरव देने का आंदोलन है। इसके प्रति भी ब्रह्मा कुमारी मूवमेंट ने अपने को समर्पित किया हुआ है। आज के जमाने में एक बहुत बड़ी चुनौती पर्यावरण की चुनौती है। पर्यावरण का हम लोग अधिक से अधिक अपने उपभोग के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन पर्यावरण के रक्षण की तरफ ध्यान नहीं देते। पर्यावरण का क्षय अगर इसी तरीके से होता रहा तो विश्व के लिए एक बहुत बड़ा संकट उपस्थित होगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि पर्यावरण के प्रति हम संवेदनशील हों और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होने का अर्थ है कि हम पर्यावरण का विवेक पूर्वक इस्तेमाल करें, विवेक पूर्वक इस्तेमाल करें, जितना आवश्यक हो उतना ही इस्तेमाल करें। यह पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता ये भी आज के जमाने की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यों की प्रतिष्ठा, शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचे संस्कारों की प्रतिष्ठा, शिक्षा के क्षेत्र में वैल्यूज की प्रतिष्ठा, ये भी आज के जमाने की बहुत बड़ी जरूरत है। ये सब ऐसे विषय हैं जिन विषयों को पकड़कर अगर हम आंदोलन चलाते हैं तो वह समाज परिवर्तन का आंदोलन होगा। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आंदोलन ने इस प्रकार के विषयों को अपने हाथ में लिया है। भाइयों और बहनों, जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं वह दौर भौतिकतावाद का दौर है और भौतिकतावाद का आधार है साइंस और टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित इस भौतिकतावाद ने हमें आध्यात्मिकता से विमुख कर दिया है। इसलिए आज दुनिया एक द्वंद्व में से गुजर रही है, भौतिकतावाद बनाम अध्यात्मवाद। भौतिकतावाद का बढ़ता हुआ आकर्षण नई पीढ़ी को आध्यात्मिकता से विमुख कर रहा है। इसके कारण हम देखते हैं समाज में समरसता का अभाव, हार्मनी नहीं है, डिसहार्मनी है, संघर्ष है, हिंसा है, मारकाट है, भ्रष्टाचार है, स्वार्थ है, व्यक्ति अपनी सोचता है। ये सब इसी भौतिकतावाद की उपज है। हमको एक ऐसे समाज की आवश्यकता है जो समाज समरस समाज हो, जिसमें हार्मनी हो, जिसमें समरसता हो, जिसमें कोई हमसे बाहर ना हो, कोई हमसे पराया ना हो, सारी वसुधा हमारा कुटुंब हो, सारा विश्व हमारा परिवार हो। इस प्रकार का उदार दृष्टिकोण, इसके लिए एक प्रबल आध्यात्मिक आंदोलन की आवश्यकता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आंदोलन उसी प्रकार का एक आध्यात्मिक आंदोलन है जो नए समाज की रचना के काम में लगा हुआ है। और वह दिन दूर नहीं जब इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप एक नए समाज का निर्माण होगा। और वह नया समाज कैसा होगा? वह नया समाज ऐसा होगा जो स्पिरिचुअलिटी पर आधारित होगा, जो यूनिवर्सलिज्म पर आधारित होगा, जो समरस समाज होगा, जिसमें प्रेम होगा, जिसमें अहिंसा होगी, जिसमें दूसरों को स्वीकार करने का भाव होगा, जिसमें कोई पराया नहीं होगा, इस प्रकार के एक मूवमेंट के रूप में हम ब्रह्म कुमारी आंदोलन को देखते हैं। और यह समय की मांग है, समय का तकाजा है। मनुष्य सुख और दुख, इनमें से सुख अपने लिए रखना चाहता है, दुख दूसरे को देता है। अपने लिए सुख की कामना करना और दूसरे को दुख देना, इस दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। और इस दृष्टिकोण को बदलने का अर्थ है कि दूसरों को सुख देना, एक बहुत सुंदर चार पंक्तियां हैं, चार वेद छह शास्त्र में बात कही है दोए, चारों वेदों में और छह शास्त्रों में केवल दो बात कही गई है। क्या दो बातें कही गई हैं? सुख देवत सुख होत है, दुख देवत दुख होए। सुख देवत सुख होत है, सुख देने से सुख होता है, दुख देने से दुख होता है। यह सारे शास्त्रों का, यह चारों वेदों का निचोड़ है, यही अध्यात्मवाद है। मुझे इस बात की खुशी है कि ब्रह्म कुमारी आंदोलन के रूप में एक ऐसा विश्वव्यापी आंदोलन पिछले 8 दशक से चल रहा है, जो आंदोलन सामाजिक रूपांतरण का, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का, सामाजिक बदलाव का आंदोलन है। ये हमको भीतर से बदलने का आंदोलन है, ये हमको बाहर से बदलने का आंदोलन है, ये मनुष्य मनुष्य के बीच में बंधु भाव पैदा करने का आंदोलन है, ये मनुष्य मनुष्य के बीच में जो विषमता पैदा हो गई है उसको दूर करने का आंदोलन है, ये अहिंसा और करुणा का आंदोलन है, यह रचनात्मक आंदोलन है, यह मनुष्य को उसका गौरव देने का आंदोलन है। इस आंदोलन के द्वारा समाज में एक ट्रांसफॉर्मेशन और परिवर्तन हो रहा है, जो समय की मांग है। मैं निहायत खुश हूं कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का यह 80वां वार्षिकोत्सव है, और इस अवसर पर आपने अनेक महानुभावों को यहां आमंत्रित किया है, जिन्होंने अपने श्रेष्ठ विचारों के द्वारा हमारे जीवन को एक सही दिशा देने का प्रयत्न किया है। मैं एक बार प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्थान को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे आपके बीच में आकर कुछ शब्द कहने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय महामहिम भ्राता ओम प्रकाश कोहली जी, गवर्नर ऑफ गुजरात। बड़ा ही आनंद आया आपकी इतनी निश्चल वाणी को सुनके, उसमें एक अद्भुत शांति का प्रवाह था आपकी वाणी से। आपके अंतर के राजा और ऋषि दोनों ही प्रकट होते हैं। मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगा, सिर्फ 5 मिनट का कार्यक्रम बाकी है, कृपया बैठे रहें, कृपया कोई नहीं जाएं, कृपया सभी यहीं पर विराजमान रहें। आपकी प्रज्ञा से सचमुच यहां एक अलौकिक तेज निखर रहा था, जैसे वो इस वातावरण के साथ एक साथ समाहित हो रहा था। ऐसी जब अलौकिक शक्तियों का मिलन होता है, दिव्य आत्माओं का आपस में मिलन होता है, तो उसमें जग परिवर्तन की एक बहुत ऊर्जा होती है, और उसका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पूरे वायुमंडल पर, ब्रह्मांड पर, हर हिस्से पर पड़ता है। अब हम चाहेंगे कि हमारे आदरणीय मेहमान भ्राता ओपी कोहली जी का, जो महामहिम गुजरात हैं, हम हृदय से सम्मान करें। मैं बहनों को आमंत्रित करना चाहूंगा, क्योंकि मेहमान जो हमारा होता है वो जहां से प्यारा होता है भारत की ये रीत रही है। बाबा के इस पावन घर में आप आज मेहमान भी हैं तो इस परिवार के सदस्य भी हैं। आदरणीय दादी जानकी जी की तरफ से, जिनकी छत्र छाया से, प्रेरणाओं से ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय और आगे बढ़ रहा है, फल फूल रहा है, उनकी ओर से, सारे परिवार की ओर से आपका सम्मान हम कर रहे हैं। भ्राता निर्वैर जी, आदरणीय भ्राता मृत्युंजय जी, दीदी सरला जी, ऐसी महान आत्माओं के पधारने से बाबा का घर और सजता है और इस विश्वव्यापी जो विश्व परिवर्तन का कार्य है उसको और तेज मिलता है। राधा निर्वैर जी सम्मान करते हुए याद सौगात महामहिम गवर्नर गुजरात को प्रदान करते हुए, साथ ही साथ हमारे भ्राता जी भ्राता कविंदर गुप्ता जी को, जो कि स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू कश्मीर हैं, उनका भी सम्मान कर रहे हैं, उनको मोमेंटो दे रहे हैं। हमारे आज के एक और माननीय मेहमान डॉक्टर वी के सारस्वत जी, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल डीआरडीओ एंड चीफ साइंटिफिक एडवाइजर टू द इंडियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, उनका भी सम्मान इसके पश्चात होगा। यादों में बड़ा प्यारा समय रखेंगे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ऐसी महान आत्माएं जब आती हैं तो इस कार्य को और प्रेरणा मिलती है और इस ईश्वर विश्वविद्यालय की छत्र छाया में, प्रभु की छत्र छाया में आने वाले मेहमानों को उनके जीवन में और सात्विक लाभ होता है, दोनों तरफा है। अर्चिका बहन दीदी जो की दिशा टीवी एमजी की एमजी हैं, उनको भी निर्वैर भाई जी ने मोमेंटो दिया। साथ ही साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर भ्राता बी के बनारसी भाई जी को, जो कि एवर हेल्दी हॉस्पिटल के हमारे डायरेक्टर हैं और बहुत ही मुख्य भाई हैं, आजीवन अपनी सेवाएं उनकी समर्पित हैं। अनिल देवगन जी जो कि एक्टर अजय देवगन के ब्रदर हैं, उनका भी इस मंच से, इस दिव्य मंच पर सम्मान किया जा रहा है। हमें बड़ी खुशी आप आज हमारे बीच उपस्थित हैं।
ओम शांति। परम आदरणीय महामहिम गुजरात के गवर्नर ओपी कोहली जी, निर्वैर भाई, हमारे मृत्युंजय भाई, मंच पर उपस्थित महान हस्तियां, सभा में उपस्थित हमारे भाई बहने, मैं तीन दिन से देख रहा हूं कि ये कितना महान हस्तियां यहां आई हुई है। मैं सोच में था कि क्या दादी जी के निमंत्रण पर ही आए हैं, क्या मृत्युंजय भाई के निमंत्रण पर आए हैं, नहीं, स्वयं परमात्मा शिव बाबा के निमंत्रण पर ये महान हस्तियां आई है। साथ ही साथ मैं ये देख रहा था कि परमात्मा शिव बाबा ने एक पौधा लगाया ब्रह्मा बाबा और दादियों को, दीदियों के द्वारा। आज 80 साल हो गया, सारे विश्व में फैल गया, लेकिन ये महान हस्तियां जो प्रेजेंट हुई है, जो आई हुई है, कितना भाग्यशाली है कि फल लगने के टाइम में आई है, भगवान इनको फल बांट रहा है, फल लेने के टाइम में आई है। तो ऐसे महान हस्तियों को हम तहे दिल से ब्रह्मा कुमारी आश्रम की तरफ से, दादी जानकी की तरफ से, हम सारे विश्व के भाई बहनों के, ब्रह्मा कुमार भाई बहनों की तरफ से हम अपने आदरणीय महामहिम गवर्नर साहब को तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ हम अपने महान हस्तियों को, एक एक का नाम ले तो बहुत टाइम हो जाएगा, ऐसे ही लेट हो चुका है, तो हम सबको हम हाथ जोड़ करके अभिनंदन भी करता हूँ, शुक्रिया भी करता हूँ और तहे दिल से हम आप सबका अभिनंदन करता हूँ। साथ में जो बैठे हुए हैं हमारे महान हस्तियां, जिनका इतना भाग्य है कि फल भगवान इनको फल देने के लिए लाया है, बुलाया है, तो उन महान हस्तियों को भी हम दिल से अभिनंदन करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ, तहे दिल से थैंक्स करता हूँ और सभी का हम फिर से नाम सहित अभिनंदन और थैंक्स शुक्रिया करता हूँ। ओम शांति।
आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय भ्राता डॉक्टर बनारसी जी। पर बहनों, बड़ा ही प्यारा आज का कार्यक्रम रहा और इतने महान विभूतियों की उपस्थिति से ये वक्त और सज गया। इस वक्त में चार चांद लग गए। ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मृत्युंजय भाई और उनके सभी टीम को बहुत बहुत बधाई। बहुत ही अच्छा वो आयोजन कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा मुस्कुराते रहिए और जिंदगी के हर पल को उत्सव की तरह मनाते रहिए। ओम शांति। धन्यवाद। राष्ट्रीय गान के साथ हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर एकाग्रचित होकर, स्थिर होकर खड़े हो जाएं।
पंडा